राइट, सो वी आर लाइव उमेर जी। देखिए क्रिकेट की इस वक्त बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, हर जगह क्रिकेट हो रही है। आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड उनकी सीरीज चल रही है, इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज कंक्लूड हुई है, इंडिया जाके अपने वार्म अप मैचेस भी खेल रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज चल रही है, और भी काफ़ी खबरें स्क्वाड्स रिलेटेड, रिजर्व प्लेयर्स रिलेटेड, जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उमेर साहब, मैं अगर आपको बात करूं, न्यूजीलैंड पे हमने शुरू में थोड़ा क्रिटिसाइज किया कि जी ये थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, इंटेंट नजर नहीं आ रही, ये अभी आखिरी दो मैचों में तो उन्होंने धो दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को, क्या हुआ जी ये?
यार ये बिल्कुल धो दिया है, और वही बात है, हम लोग पहले काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे, लगता है न्यूजीलैंड ने काफी हमारी पॉडकास्ट वगैरह देख लिए, कुछ उन्होंने सीख लिए इसमें। ये यार जलाल के न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा खेला है, जो ये जो बांग्लादेश वाले मैच की बात करूं अगर मैं, तो उसमें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, सही है, फिलिप्स बहुत अच्छा खेल रहा है। और जब पाकिस्तान के मैच की बात करूं तो वहां पे मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला है, उनका जो इंटेंट था काफी पॉजिटिव था। लेकिन पाकिस्तान की साइड से मैं बोलूंगा कि काफी ज्यादा मुझे जो है ना वो नेगेटिव चीजें नजर आई, तो मैं ये बोलूंगा कि जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान से जीता है उसमें थोड़ा सा क्रेडिट पाकिस्तान टीम का भी है। हालांकि जो बाबर आजम ने डिसीजंस लिए रन टाइम पे वो थोड़े सही डिसीजंस नहीं थे, हालांकि पिच रिपोर्ट्स आपके सामने थी, काफी ज्यादा फैक्टर्स थे, तो खैर उस पर भी डिस्कस करते हैं। आप जो बताएं क्या सूरत हाल लगती है आपको पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के बाद, क्या लगता है आपको?
बिल्कुल यार, देखो मैं तो उस पर बात करूंगा कि इंटेंट की बहुत ज्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान को किस तरीके से खेलना चाहिए, किस तरीके से नहीं खेलना चाहिए, और जब भी इंटेंट की बात आती है तो पाकिस्तान जब भी खेल रहा होता है तो ऑटोमेटिकली इंटेंट का जिक्र हो जाता है। अब मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बड़ी बहस चल रही है कि भाई क्या पाकिस्तान को इस पिच पर इस तरीके से खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था। अब दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, और दो स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक पहला तो ये है कि भाई ये पिच जो है ये अलाउ ही नहीं करती थी कि आप इस पे इस तरीके के साथ बैटिंग करो कि आप हर बॉल दूसरी बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करो, इसमें आप सिंगल डबल करके और ऑड बाउंड्री आप तलाश कर सकते थे। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भाई इतने अरसे से आप चीख रहे हो कि जी पाकिस्तान पॉजिटिव खेले और छक्के मारने की कोशिश करे, अब जब छक्के मारने की कोशिश की तो ऑब्वियसली ऐसे दिन भी आएंगे कि जब आपको फेलियर्स का सामना करना पड़े, क्योंकि आपको याद होगा जब इंग्लैंड ने ये चीज़ें स्टार्ट की थी तो ऐसे दिन भी आए थे कि इंग्लैंड की टीम स्कॉटलैंड से भी हारी थी और उसके बावजूद ऑयन मॉर्गन ने कहा था कि भाई हम अपने ब्रांड को नहीं चेंज करेंगे, ऐसे दिन ज़रूर आएंगे कि हम हारेंगे और हम फेल होंगे लेकिन जो है ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमारा यही रहेगा। तो आप इसको कैसे देखते हो मेरी जान?
यार मैं इसको, वैसे जो आपने दो स्कूल ऑफ थॉट्स बताए हैं उसमें मैं जरा ज्यादा बायस टू फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ, कि जिस तरह देखे हम लोग शुरू से आए देखते रहे कि पाकिस्तान टेम्पलेट की बात करते रहे, मोहम्मद वसीम ने टेम्पलेट की बात की, रमीज राजा सकलैन, हर कोई कर रहा था टेम्पलेट की बात। तो अगर अभी वर्ल्ड कप देखे अगले हफ्ते खड़ा है, सही है, अब तो हफ्ता भी कम है खैर, तो अगर अब आके अगर थोड़ा सा अगर ये चेंज करेंगे चीजें तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा खराब, मतलब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो कि मतलब जो स्ट्राइक रेट वगैरह वो इम्प्रूव करें, लेकिन जो पिच की कंडीशंस हैं जो कि आपके मैच की जो शुरू में बंदा जो मतलब शुरू में जो बंदा देखता है पिच को, तो वो चीजें सारी देख के अपना इंटेंट शो करें। लेट्स सपोज अगर कि लेट्स अभी जो मैच हुआ है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, वो वाली पिच आपको पता है काफी स्लो सी पिच थी, वहां पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, छक्के लगना तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान साइड से बहुत मुश्किल था, ये तो शुरू में ही भी खैर फील हो रहा था, तो वहां पे छक्कों की ट्राई की जगह इनको चाहिए था सिंगल डबल करते, थोड़ी टेक्निक, थोड़ी वो कवर ड्राइव, थोड़ी वो शॉट्स मारते ग्राउंड शॉट पे ताकि वो अपनी विकेट्स वगैरह ना देते। मैं तो इस पर ये बोलूंगा कि इंटेंट अपना शो करें लेकिन वो पिच के हिसाब से, मैच की कंडीशंस के हिसाब से, मेरा इस पर ये पॉइंट है।
हाँ नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक ट्रिकी मामला है कि आपको जज करना इस तरीके से पिच को और एकदम से आप उस हिसाब से गेम चेंज करना, तो ऑब्वियसली स्किल लेवल्स की थोड़ी सी तो हमें अपनी टीम में कमी नज़र आती है उस एस्पेक्ट से। लेकिन मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार देखो, पहले हम रोना ये रोते रहे कि आप ट्राई नहीं करते, ठीक है, अब उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया, वो पे ऑफ नहीं किया और ट्राई शायद गलत पिच पे किया, जिस तरह आप कह रहे हो पिच ज़रा स्लो साइड पर थी और उसके ऊपर इस तरह का शायद स्टाइल ऑफ प्ले सूटेबल नहीं था इस पिच पे, शायद जिस तरह वो वकार यूनिस भी कह रहे थे कमेंट्री के दरमियान कि ये तो कराची टाइप की पिच लगती है, ठीक है, तो ये तो ज़्यादा सूट करेगी पाकिस्तान को, तो उधर शायद हम अगर अभी पुराना टेम्पलेट ही यूज़ करते तो मेरा ख्याल है इस पिच के ऊपर बेहतर हो जाता। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए नहीं हूँ ज़्यादा इस मैच पे कि एटलीस्ट आपको कुछ चेंजेस देखने को मिली स्टाइल ऑफ प्ले में. अब वो पे ऑफ नहीं की तो वो एक अलग बात है. फिर इसी पे अगर हम इंटेंट पे बात करें, एक दफ़ा विराट कोहली से किसी ने पूछा था कि इंटेंट का क्या आप क्या मीनिंग लेते हो उससे, तो उन्होंने बोला था कि यार इंटेंट बेसिकली पॉजिटिव माइंडसेट का नाम है. सही, क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने बोला था इंटेंट आप बॉल लीव करते हुए भी शो कर सकते हो. ठीक है, कि आपका पॉजिटिव फुटवर्क हो, बॉलर को ये आइडिया हो कि यार ये बैटर आया है ना तो ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आया है कि भाई ये बॉल भी लीव कर रहा है तो इसका पूरा पाउंड चल रहा है. सही है, सिंगल डबल भी इंटेंट का नाम है. हमने ये देखा उस्ताद के हमारे चाचू से तो भागा नहीं जा रहा था. क्या स्टोरी है ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स की? रिजवान बाबर तो अच्छी करते हैं.
बिल्कुल, आपने जो एग्जांपल दी है विराट कोहली की वो बिल्कुल जेन्युइन है इंटेंट के लिए, कि इंटेंट आपका वो होना चाहिए कि आप जब क्रीज पे आए हो तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो. जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर बॉल छोड़ो तब भी पॉजिटिव हो. और लेकिन पाकिस्तान का जो आप इफ्ती की बात करें, इफ्ती चाचू की, तो मैं तो यार बड़ा वही बात है, काफी अरसे से डिसअपॉइंट ही हो रहे हैं उनके. हम ये जो बैटिंग उनका जो स्टाइल है जिस तरह वो खेल रहे हैं, इस पे यही है कि इम्प्रूवमेंट करें. और मेरे ख्याल में काफी ज्यादा जरूरत है इम्प्रूवमेंट की. तो बाकी आप मुझे बताएं कि हैदर अली के बारे में क्या ख्याल है, कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहे. उनको काफी ज्यादा चांसेस मिल भी गए. अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यार हैदर अली को चांस नहीं मिल रहा. तो हैदर अली के परफॉर्मेंस को आप किस तरह देख रहे हैं और वर्ल्ड कप की जो प्लेइंग 11 में आप देख रहे हैं उनको?
यार हैदर अली की परफॉर्मेंस वही बात है, वो दो शॉटें ही लगी हैं जो उनकी पिछले मैच में लगी थी, इस वाले मैच से पिछले मैच में. तो देखो अब चांस तो देना बनता है क्योंकि सारे लोग बात कर रहे थे. अब आप टीम पे भी उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. इस टीम मैनेजमेंट को एक क्रेडिट तो जाता है कि हर किसी को पूरा चांस दे रहे. अब इन प्लेयर में से जो बायर होगा वो ये रोना नहीं रो सकता कि भाई हमें चांस नहीं मिला. ठीक है, तो पूरा चांस दे रहे हैं जहां पर भी वो उनको मौका मिल सकता है, मौका मिल रहा है. अब तो बल्कि मिडिल ऑर्डर ये भी नहीं कह सकता कि हमें बॉल्स नहीं मिल रही. अब तो अपॉर्चुनिटियां इंग्लैंड वाली सीरीज से लेके अब तक ऐसे मौके आए हैं कि इनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं. अब इफ्तिखार की भी इनिंग्स को दो नज़रिए देखने के विकेट्स गिर गई थी. वो शायद चाह रहे थे मैं डीप लेके जाऊं, लेकिन पिच ऐसी थी कि उनसे हिटिंग नहीं लग रही थी. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप कंपैरिजन करो फिन एलन की हिटिंग को, तो आपको लगता है हमारे वर्कआउट थोड़ा सा ना तब्दील करना पड़ेगा, थोड़े टिप्स लेने पड़ेंगे एलन से.
यार बिल्कुल, एलन ने बड़े मजे से छक्के मारे. और बल्कि मैं तो हैरान हो रहा था यार कि पाकिस्तान ने एक भी छक्का नहीं मारा और एलन साहब जी छक्के छक्के शाहनवाज के जिस तरह मारे उन्होंने, बड़े प्यारे छक्के. तो मेरे ख्याल में जलाल, एक तो एलन हो सकता है पॉजिटिव माइंडसेट हो, दूसरा एक और चीज होगी, शायद स्कोर कम था, शायद उसके बाद रिस्क लेने के चांसेस ज्यादा थे, इस वजह से शायद वो ज्यादा बूस्टअप हो गया कॉन्फिडेंस उसका. क्या कहते हैं आप?
नहीं, इस पे मैं अभी आता हूँ. ये बात आपने बहुत प्यारी की है और इस पे एक और मुद्दा भी बड़ा हॉट चल रहा है बाबर की कप्तानी पे, वो भी मैं बात करता हूँ. राबी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, हाउ आर यू बोथ ऑफ यू? उमेर साहब आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ.
वालेकुम अस्सलाम, मैं भी ठीक ठाक. राबी साहब आप सुनाए, क्या हाल चाल है जनाब?
जबरदस्त जी, क्रिकेट फीवर साहब भी आ गए हैं जी आज शुरू में, शुक्र जुड़ गए हैं. अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. और ये खबर भी दे रहे हैं आके, ये कह रहे हैं कि जी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हैदर अली विल बी रिप्लेस्ड बाय फखर जमान. उस्ताद जी क्रिकेट फीवर भाई ने खबर
अच्छा,
दी.
ये वैसे बात इन्होंने, अच्छा ये चीज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फखर जमान आएगा, लेकिन मैं सोच रहा था खुशदिल की जगह शायद इसकी रिप्लेसमेंट बने.
हाँ मैं भी वैसे यही सोच रहा हूँ क्योंकि खुशदिल को तो खिलाया भी नहीं है ना इस सीरीज में अब तक, तो देखना पड़ेगा. वुडू पाक भाई भी आ गए.
आपको याद है, अच्छा वुडू पाक अस्सलाम वालेकुम कह रहे, वालेकुम
अस्सलाम
वुडू पाक. अच्छा आपको याद होगा जलाल, मोहम्मद वसीम ने भी बोला था जब वो आई थिंक कौन से शो में आया था, स्पोर्ट्स तक में था, किसमें था, गेम सेट पे, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि भाई आपको जो वहां पे आपको
उमेर साहब की तो मुझे लगता है
कि मतलब जो ट्राई सीरीज हो रही है.
ठीक है, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा रिपीट करें.
हाँ जी, मैं कह रहा था वो आपको याद होगा मोहम्मद वसीम ने भी एक जो इंटरव्यू दिया था उसपे वो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आपको नजर आएगी क्या कि पाकिस्तान स्क्वाड की क्या शक्ल होगी, कि प्लेइंग 11 कौन हो सकता है. तो हैदर अली को मेरे ख्याल में ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन क्रिकेट फीवर कह रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है.
यार देखो, अब ये तो ट्रिकी मामला है ना। फखर और शाहीन अब 15 को आते हैं तो देखना पड़ेगा। अभी बड़ा कम टाइम रह गया। मेरा ख्याल है कल का मैच, ये बांग्लादेश के मैच के बाद हमें अपना स्क्वाड फाइनल ऑब्वियसली बताना ही पड़ेगा, तो टाइम कम रह गया है।
बिल्कुल
देखते हैं क्या होता है। राबी साहब कह रहे हैं हैदर अली शान मसूद शुड बी किक्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान स्क्वाड। ये गुस्से में है राबी साहब, आज हैवी
ये
मोड में आए हैं, गुस्से में।
आज हैवी मोड में है। और जलासा इन्होंने शान मसूद को भी कह दिया। शान मसूद के तो आपको पता ही है कि काफी हम लोग उसको वो उसको बल्कि आप तो काफी उसको सपोर्ट करते आए हैं और हम लोगों ने काफी उसको बोला है। क्या बोलेंगे आप इसको इस बार?
यार वही वाली बात है कि शान मसूद ने अभी तक उस तरीके से तो ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं कर सके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब इस पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने खुशदिल, इफ्तखार, आसिफ वगैरह को या हैदर को जितने चांस दे रहे हो उतने फिर शान के भी चांस बनते हैं। जितना आपने फखर को रन दिया, फिर आप ये नहीं कर सकते कि एक प्लेयर को आप 8-10 मैचेस दो, एक को आप 20 मैचेस दो, तो थोड़ा सा वो ज्यादती हो जाएगी। और शान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि बहुत ही कोई बुरी है, मतलब वो 250 कर चुका हुआ है और स्ट्राइक रेट उसका ऑब्वियसली थोड़ा लोअर साइड पे, लेकिन स्टिल 130 अबव है। और अनफॉर्चुनेटली जब फखर जमान भी वन डाउन खेल रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं था। तो अब ये ट्रिकी सिचुएशन है पाकिस्तान की, दोनों उस तरीके से तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह हम चाह रहे हैं। लेकिन उमेर साहब, क्वेश्चन पीछे एक रह गया था जो मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे अभी अभी याद आ गया। देखें
जी।
क्या बात है
हाँ पूछे पूछे क्या बात है।
यार। देखो बात हो रही थी फिन एलन के छक्कों की और हाँ कंपैरिजन तो हमारे बैट्समैन के छक्के, ठीक है। क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि देखो पाकिस्तानी जब बैटिंग कर रहे थे तो स्पिनर्स को लगाया हुआ था उन्होंने शुरू में ही। ब्रेसवेल आया, ब्रेसवेल
बिल्कुल
की मतलब वो बॉल लग ही नहीं रहा था उसको, रिजवान भी फंस गए थे, बाकी सारे भी फंस गए थे।
ऐसा ही है।
पाकिस्तान ने अपने 6 के 6 पहले ओवर पेसर से कराए, क्या कहते हो?
यार वही बात है जलाल, जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की आप बात कर रहे थे, मैं तो उसी तरफ हूँ कि देखिए पिच में अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने 6 ओवर्स पहले फास्ट बॉलर से कराए, ठीक है। न्यूजीलैंड ने ऑन द अदर साइड आप देख रहे सेंटनर आ गया शुरू में, ठीक है, सारे उसके बाद भी ब्रेसवेल आ गया, स्पिनर्स ने आके डोमिनेट किया और देखें वो उनके लिए फायदेमंद होगी चीज। अब देखें यहाँ पे देखें जो ब्रेसवेल है, ब्रेसवेल की स्पिन का उसकी स्पिन इतनी अच्छी नहीं है अगर हम शादाब से कंपेयर करें, नवाज से या इवन वो चाचू से, लेकिन फिर भी केन विलियमसन ने उनपे कॉन्फिडेंस दिया, मतलब कि उसने उसने अपना कॉन्फिडेंस शो कराया उनपे ना, उनको चांस दिया। अब बाबर आजम की साइड पे वही चीज मुझे नजर आई कि यार वो अपनी अप्रोच के साथ कंसिस्टेंट है कि वो ना मतलब फास्ट बॉलर्स को ही मतलब वो ज्यादा वो प्रेफरेंस देता है, जैसे हाँ वो फास्ट बॉलर ज्यादा
अच्छा,
प्रेफरेंस
लेकिन
देता है और
इसमें
ये चीज
हमने
मेरे ख्याल गलत किया।
एशिया कप वगैरह और इंग्लैंड की सीरीज में हमने देखा था कि नवाज को शुरू में वो ओवर देता था।
एक दो बिल्कुल
हाँ, इस इधर आपको वो देखने को नहीं मिल रहा, तो शायद ये एक पैटर्न भी है। मतलब देखो अब इसमें हमें तो नहीं पता बाबर के दिमाग में क्या चल रहा है, इसी वजह से मैं कह रहा था दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है कि भाई गलत किया, बिल्कुल ऑब्वियसली नजर बजाहिर तो गलत ही नजर आ रहा था क्योंकि स्पिन को वो विकेट जो है वो स्पिन फ्रेंडली नजर आ रही थी और न्यूजीलैंड ने स्पिनर्स को अच्छा यूटिलाइज किया। ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान पेसर्स की तरफ गया, तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पिचेस नहीं होंगी मोस्ट प्रॉबली, तो इस जैसे बाबर ये चाह रहा होगा कि यार मोस्ट प्रॉबली हम पहले 6 ओवर्स पेसर्स के साथ जाएंगे तो वाई नॉट ट्राई इट आउट, क्योंकि ये मैच इतना इसका रिजल्ट मैटर नहीं करता, हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तैयारी करो वर्ल्ड कप की। अब आई डोंट नो बाबर इतना विजनरी है या नहीं कि हम उसे ये लीवे दें,
अच्छा जलाल
लेकिन दोनों बातें चल
बिल्कुल
रही हैं।
ये बात भी आपकी सही है सेकंड स्कूल ऑफ थॉट की। अब यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे वो सवाल है आपसे एक मेरा कि देखिए हम लोग देखते आए हैं पुरानी वीडियोस में भी हमने बात की है कि यार पाकिस्तान के टेम्पलेट की बात की है, तो अब अगर पाकिस्तान थोड़ा चेंजेस करते हैं, लेट्स सपोज बाबर आजम थोड़ी वो चेंजेस करते हैं चीजों पे, तो आप क्या समझते हैं कि ये थोड़ी कोलाइड नहीं कर जाएंगी चीजें पाकिस्तान टीम के एंड पे, हालांकि वर्ल्ड कप अभी वो स्टार्ट होने वाला है, तो क्या कहते हैं
यार
आप इसको?
बात वही है, ट्रिकी है उमेर। अगर ट्राई नहीं करेंगे तब भी क्रिटिसिज्म होगा, ट्राई करेंगे अब तब भी हो रहा है। तो अब ये हमारी तरफ से भी एज फैंस जो है ना थोड़ी ज्यादती है क्रिकेट की हमारी टीम पे कि अब कुछ तो उनको जीने दो यार, थोड़ी सी तो मासूम जान है उनको, कुछ तो करने दो। अब करें तब भी हम खुश नहीं, ना करें तब भी खुश नहीं। इसी मौके पे थोड़ा सा हम कमेंट्स लेते हैं, कमेंट्स आ गए थोड़े ज्यादा
जी
एकदम
लें
से।
बिल्कुल सही
अच्छा
सही
जी, वुडू पाक क्या कहते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड चार्ज कर रहे हैं, पाकिस्तान अभी तक मिस्बाह वाली क्रिकेट खेल रही है। यार देखिए, ये बात तो आपकी ठीक है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तो कर रहे हैं, इंडिया पे अभी भी थोड़ा सा डाउट है केएल राहुल रोहित शर्मा की ओपनिंग बारी पे। इवन दो रोहित शर्मा थोड़ा सा अटैक करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, केएल राहुल पे थोड़ा सा अभी भी डाउट है। न्यूजीलैंड ना बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है फिन एलन के ऊपर इस टाइम के ऊपर, क्योंकि कॉनवे और जो विलियमसन है वन डाउन पे आ रहे हैं, उनकी स्ट्राइक रेट का बड़ा इश्यू चल रहा है। और उमैर, केन विलियमसन तो शायद इस साइड इस साल उनका ऑलमोस्ट वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स में
बिल्कुल
आ रहा है, 99 का स्ट्राइक रेट है और शायद 300 से ज़्यादा रन्स बनाने में सबसे उनका जो है वो वर्स्ट स्ट्राइक रेट चल रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है।
यार, बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी पॉइंट वाली बात की है कि जो न्यूजीलैंड का भी थोड़ा सा यही इशू है कि वो भी अपने दो बंदों पे ज्यादा रिलाय करते हैं कि यार ये हमारे 9-10 ओवर तक खड़े रहेंगे। जिस तरह आप कॉनवे की बात करें, विलियमसन की बात करें, अगर हम यहाँ पे लास्ट 2 मैचेस को निकाल दें, उससे पहले हम यही देख रहे थे कि यार ये लोग आराम आराम से खेलते हैं। फिर उसके बाद जो नीचे से फिलिप्स आता है, चैपमैन आता है, और जो इनका एक और जो निशम है वो आता है, वो फिर एकदम मारते हैं 130 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो ये भी एट द एंड मुझे लग रहा है कि शायद इनका ना थोड़ा सा वही इशू है कि इनको ना वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है कि शायद नीचे वाले प्लेयर्स एकदम आउट हो जाए, कुछ इस तरह मुझे लग रहा है इनका
लेकिन
भी इशू
इनका
है।
130 से नहीं खेलते उमर, इनका 150 अबव से खेलते हैं जो नीचे वाले हैं ना। हमारा मसला ये है कि हमारे नीचे वाले भी उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते। इनका कम से कम वो है कि फिलिप्स में आपको नजर आते हैं पावर हिटिंग, चैपमैन में नजर आता है, या आपको नीशम तो आपको पता ही है। इवन अभी ब्रेसवेल, आपको
बिल्कुल
याद होगा जब ब्रेसवेल, कौन सी सीरीज हो रही थी इनकी
आयरलैंड के साथ हुई
आयरलैंड
थी
के
जिसपे
साथ,
सेंचुरी मार दी थी।
हाँ
बिल्कुल
हाँ हाँ
हाँ
तो हमने उस टाइम के ऊपर
याद।
ब्रेसवेल का रिकॉर्ड देखा, तो अगर फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड निकाल के देखो तो ये बैटिंग ज्यादा करता है, बॉलिंग पार्ट टाइम करता है ये
हाँ
डोमेस्टिक में भी, ठीक
बिल्कुल
है, लेकिन यहाँ पे
ऐसा ही
इसको
है
सोली एज अ वो बॉलर खिला रहे हैं। देख देखो जरा, पाकिस्तान बना देता है।
बिल्कुल।
क्रिकेट
और
फीवर
आपको याद
भाई,
हो
ये क्या
क्या
कहते
कह रहे
हैं,
हैं क्रिकेट फीवर?
आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद हैव गॉट इनफ चांसेस विद जीरो परफॉर्मेंस एंड फैंस गॉट एक्साइटेड ओनली, मतलब वो कह रहे हैं सिर्फ दो छक्के मारो तो फैंस
दो
खुश हो
छक्कों
जाते हैं,
से
एंड दे
सही है।
डोंट वांट शान इन स्क्वाड हु हैव ब्रिलियंटली स्कोर्ड इन काउंटी क्रिकेट कंसिस्टेंटली। ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है सर, प्रॉपर बैटर तो है शान, आपको नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वो मिसफिट लग रहे हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल गेम शायद ये नहीं है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देना चाहिए उनको। लेकिन अब भाई स्क्वाड को बैक
टाइम तो
करो,
देना चाहिए
अब बैक करो, अब
यार।
गुस्सा ना करो।
हाँ नहीं, अब जाहिर है इसके अलावा कोई ऑप्शन भी उस तरह नहीं है ना। मतलब कि देखें, ये सब प्लेयर जो आसिफ, जो ये मेंशन करें, आसिफ, खुशदिल, हैदर अली, इफ्तिखार, ये कितने अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं, और अगर इनको अगर अभी वर्ल्ड कप में नहीं रखा और अगर कोई और लेट्स शोएब मलिक को ले आते हैं, शर्जील, किसी को और भी ले आते हैं बाहर से, तो फिर तो काफी ज्यादा इन पे बातें स्टार्ट हो जाएंगी। इवन फिर ये काफी नेगेटिव हो जाएगा
खबरें
एक
वैसे शोएब
किसी टीम
मलिक
का
की दोबारा गर्म हो
एटमोस्फेयर
गई है मार्केट में
में।
एक
यार
दो
वैसे
दिन से।
शोएब मलिक, वाकई सही बात है, शोएब मलिक देख, यार वैसे शोएब मलिक अच्छी ऑप्शन है, कुछ कह नहीं सकते, वो तो अब हो गया किस्सा।
राबी साहब कहते हैं
अच्छा
आई ऑलवेज सपोर्ट, थोड़े से कमेंट ज्यादा हैं, मैं पहले ले लेते हैं फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं।
चले चले
आई
चले।
ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान टीम बट दिस वर्ल्ड कप मे बी इंडिया विन अगेंस्ट पाकिस्तान, दे हैव 85% चांस। देखो यार, इंडिया का तो वर्ल्ड कप्स में 90% से ऊपर ही चांस होता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस दफा पाकिस्तान मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा आप इसको 85% चांस दे सकते हो इंडिया को, खास तौर पे अगर शाहीन वापस आ जाता है फुली फिट और फखर जमान भी फुली फिट वापस आ जाता है, आई थिंक अच्छा मैच होगा। प्रॉबेबली 60% इंडिया, 40% पाकिस्तान एट दिस स्टेज, बट आई डोंट थिंक 85%। क्या कहते हो मेहर आप?
यार मैं तो बोलूंगा कि जैसे इंडिया का अगर पास रिकॉर्ड देखें ऑस्ट्रेलिया में, और जिस तरह की स्ट्रेंथ है इंडिया के पास खास तौर पे बैटिंग में, तो मैं तो 70% बोलूंगा इंडिया को और 30% बोलूंगा पाकिस्तान को। हालांकि मैं चाह रहा हूं कि मैं 70 से बढ़ाऊं, लेकिन बस वो थोड़ा
नहीं,
स्ट्रेटेजी
मेरी भी
करना चाह रहा
पेट्रियोटिज्म नहीं जागी,
हूँ।
मैंने भी अपनी 60% जो बोला है
हाँ
वो इसलिए बोला है क्योंकि इंडिया की
हाँ
बॉलिंग पे अभी गैप्स नज़र आ रहे हैं, अभी गैप्स नज़र आ रहे हैं।
यार हाँ, वो डेथ ओवर्स में काफी इशू है, कौन आता है। लेकिन जलाल वो खबर आई है, खैर उस पे आते हैं बाद में, वो आगे हमारा टॉपिक है। जलाल एक और सवाल है यहाँ पे मेरा आपसे एक, देखिए हमने देख लिया कि पाकिस्तान की टीम जो है वो चेस तो चले वो कर लेती है, क्योंकि कुछ उनको सामने नजर आ जाता है 20 ओवरों में हमने 180 करना है, 200 करना है या 130 करना है, उसी हिसाब से खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की पहली बैटिंग आती है, तो वहां पे काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह, अगर अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान की पहली बैटिंग आती है, तो वो अपना क्या माइंडसेट रखें, किस तरह की चीजें, किस तरह का वो खेले?
यार देखो, मैं तो यही नोट कर सकता हूँ कि अगर सिर्फ पाकिस्तान का ये मसला नहीं चल रहा, थ्रू आउट T20 क्रिकेट में ये मसला चल रहा है कि बैटिंग फर्स्ट करना हर टीम के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको पिच असेस करना जल्दी मुश्किल होता है। फिर आप अपने जेन में बना के आए होते हो, क्योंकि आजकल 170 का स्कोर एक समझा जा रहा है T20 में कि यार इतना तो होना ही चाहिए चाहे जैसी भी पिच हो,
बिल्कुल
तो वो आप कुछ फोर्स करते हो। फिर अगर अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं फिर आपको अपना चेंज करना पड़ता है। तो ये बात सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, स्कोर सेट करना हर टीम का मसला है। इसमें सिर्फ आप ये कर सकते हो कि आप बैटिंग फर्स्ट करते हुए शायद आपको एक दो ओवर्स देखने पड़ेंगे पहले, ठीक है? आप राइट फ्रॉम द वर्ड गो करना मेरे हिसाब से बैटिंग फर्स्ट करने के लिए ये डिसएडवांटेज है टीम के लिए T20 क्रिकेट में, कि आपको शायद पहले दो ओवर असेस करने पड़ जाते हैं, उसके बाद आप चलो। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर इसको स्मार्टली प्ले करे तो हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि रिजवान बाबर पिच को अच्छा एसेस कर भी लेते हैं। अब उनको थोड़ा सा ये करना है कि मिडिल ऑर्डर को स्टेप अप करना है हमारी टीम में, और बाबर और आजम को और उनको थोड़ा सा ट्रस्ट करना है। मुझे लगता है यही एक कमी रह गई है, बाकी आई थिंक वील बी गुड।
हाँ, बस इसमें यही ऐड होने के, आप सही कह रहे हैं, इसमें बस ये एक और ऐड होने के, जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो फिर डायनेमिकली चेंज करते रहे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।
ये आ गया क्रिकेट 360 कहते हैं कि जब तक आपको ओपनिंग अच्छी पावर हिटिंग नहीं लगा के देगी तब तक मिडिल ऑर्डर का मसला रहेगा, शर्जील बेस्ट ओपनर। ये 360 भाई देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी ओपनिंग में पावर हिटिंग का मसला है, और शर्जील खान में पावर हिटिंग बहुत है, लेकिन सिर्फ पावर हिटिंग नहीं चलती भाई क्रिकेट में। मसला ये है कि शर्जील खान से ना कैच हो रहा है ना उनसे भागा जा रहा है। वो माशाल्लाह 100 किलो से ऊपर उनका इस टाइम के ऊपर वज़न है, तो क्रिकेट में कैचेस और फील्डिंग भी तो मैटर करती है ना। तो और मोहम्मद वसीम साहब ने उमैर साहब बताया भी था कि मैं 2 साल से शर्जील को कह रहा हूँ कि भाई अपनी फिटनेस पे काम कर लो, और अगर नहीं हो रहा तो अब वो कसूर चीफ सेलेक्टर या टीम का तो नहीं है, वो तो शर्जील खान का
हाँ
अपना
जी,
है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है।
क्रिकेट फीवर भाई केन विलियमसन की बजा रहे हैं, कह रहे हैं केन विलियमसन हैज नॉट इवन स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी इन T20 आईज फ्रॉम लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, आप ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हैं। IPL में भी ये मसला इनका चल रहा है, स्ट्राइक रेट का इनका इशू है। इसी तरीके से स्टीव स्मिथ का मसला ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है,
बिल्कुल।
और मार्टिन गप्टिल का भी
मैं
सरप्राइजिंगली चल रहा है
तो
उमैर केन विलियमसन ने के
अच्छा
साथ साथ इधर
यार
न्यूजीलैंड के
जलाल,
साथ।
मैं एक चीज, एक वो पैटर्न नोट कर रहा हूँ कि जो भी टेक्निकल साउंड प्लेयर्स हैं, सही है, कि जिनको आप टेस्ट मैच पे ODI में देखते हो कि बड़ी एक अच्छा खेलते हैं, वो लोग सब ना T20 में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं।
बिल्कुल
मतलब कि जो इस ये वाले फॉर्मेट को ना वो मोल्ड करने पे अपने आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम थोड़ा बहुत, मैं बोलता हूँ बाबर और कोहली, कि उन्होंने थोड़ा एकदम वो बकअप किया है इस चीज के साथ।
हाँ, वो एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो, एक
हाँ
बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, उस पर हम किसी दिन बैठ के बात भी करेंगे। मैंने शायद क्रिक इन्फो पे एक आर्टिकल पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर कि वो किसने लिखा था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि शायद T20 क्रिकेट ना चेंज कर देगी बैटर्स के पैटर्न को, जहां पे आपको लंबे बड़े पावर हिटर प्लेयर्स फ्यूचर में नजर आएंगे, और जो छोटे लेस पावर हिटिंग प्लेयर्स है ना, वो शायद ये फॉर्मेट उनके लिए आहिस्ते आहिस्ते खत्म होता जाएगा। जैसे आपने देखा है कि बास्केटबॉल की टीमें भी आप देखो ना, शुरू में इस तरह के लंबे लंबे प्लेयर्स नहीं होते थे सारे, ठीक है? पहले थोड़े दरमियाने कद के भी होते थे, लेकिन क्योंकि वो गेम इस तरह इवॉल्व कर गई कि पावर, मसल और हाइट मैटर करना शुरू होगी। अब मुझे लगता है देखो, टिम डेविड टाइप के प्लेयर्स, मिचेल मार्श टाइप के प्लेयर्स, ये कैरन पोलार्ड वगैरह, ये आंद्रे रसल वगैरह, ये शायद डिमांड में ज्यादा आ जाएंगे।
यार हाँ, हो सकता है इस तरह पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह इवॉल्व हो रही है क्रिकेट, और जिस तरह इंटेंट का वर्ड काफी ज्यादा आजकल बज वर्ड भी बना हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीज बिल्कुल फैक्चुअल है, हो सकता है ऐसा।
इश्फाक अली भाई भी आ गए हैं, कह रहे हैं सलाम अलैकुम जलाल भाई एंड उमैर भाई। वालेकुम अस्सलाम सर,
वालेकुम
कैसे
अस्सलाम,
मिजाज हैं आपके?
वालेकुम
ठीक ठाक चल
अस्सलाम।
रहा है सब? अच्छा, एक दो और कमेंट है उमैर साहब, इसको भी शो करते हैं।
जी, बिल्कुल
खुशदिल शाह को ओपनर आना चाहिए क्योंकि 2 प्लेयर्स होते हैं बाउंड्री पे तो अच्छा खेल सकता है। यार अब ये वर्ल्ड कप के बाद ही
यार,
सर जो करना है आप कर सकते हैं,
ये
अभी तो
तो
कुछ नहीं हो
जी
सकता।
बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कौन पूछ रहे हैं, क्रिकेट 360?
जी जी
हाँ यार, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में। ये तो बाबर और रिजवान, अगर अगर लेट्स सपोज वर्ल्ड कप में अगर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक चला जाता है तो मेरे ख्याल में ये अगले साल भी पॉसिबल नहीं होगा। बाबर और रिजवान ही रहेंगे टॉप पे। हाँ
अच्छा, मजेदार बात यह है कि आपके फखर और शान जो ओपनर हैं वो नहीं ओपनिंग कर पा रहे, तो खुशदिल को कहाँ से ये ओपनिंग कराएंगे। ये भी है ना एक बात। अच्छा, डीन
बिल्कुल।
जोन्स ने एक दफा आसिफ अली को भी बोला था वैसे कि आसिफ अली को ओपनिंग करनी चाहिए, तो वो भी एक कैंडिडेट बैठे हुए।
यार वैसे आसिफ अली की तरफ तो मेरा थोड़ा वोट है कि वो ऊपर आए। देखिए उनकी विकेट ऐसी है ना जलाल, अगर वो गिर भी जाए तो खैर है, क्या कहते
अच्छा,
हैं।
एक
पर अगर
ये बात भी
अगर
हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना कि पाकिस्तान ने उन टूर्नामेंट्स में ही अच्छा किया है जिन टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट किया है। 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान वन डाउन आके बैटिंग कर रहे थे, वो पहले बैटिंग नहीं करते थे उस नंबर पे, वो एक्सपेरिमेंट किया, पाकिस्तान के लिए बहुत सूटेबल रहा और एंड रिजल्ट क्या, पाकिस्तान जीता भी क्रूशल मैचेस और फाइनल भी जीता।
बिल्कुल
आपने 99 के वर्ल्ड कप में अब्दुल रजाक को वन डाउन भेजना शुरू कर दिया, सही है, वो उधर बैटिंग नहीं करते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो पे ऑफ करना शुरू हो गया, पाकिस्तान फाइनल तक चला गया, और जो भी फाइनल में जो भी हुआ वो बाद की बात है। 2009 के वर्ल्ड कप में उमैर शाहिद अफरीदी से रन्स नहीं हो
शायद
रहे थे,
अफरीदी ऊपर आ
उनको वन डाउन भेज
गए।
दिया सेमीफाइनल और उससे एक दिन एक मैच पहले फिर फाइनल में, तो आप रिजल्ट देख लो। तो एक्सपेरिमेंट जहां पाकिस्तान करता है वहां पाकिस्तान अच्छा करता है।
हाँ बिल्कुल यार, वैसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अब हम अगर इंग्लैंड को देखें, जो इंग्लैंड टीम है वो भी तो कितने एक्सपेरिमेंट करता है अपने लाइनअप के साथ। तो
यार
अच्छा है
वो
ऑस्ट्रेलिया भी।
उनको आदत होगी ना, वो अब 4-5 साल से इस तरह खेल रहे हैं। अभी देखो हमारी टीम ने अभी एक दो मैचों में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है थोड़ा, तो हम उस पर भी क्रिटिसाइज कर देते हैं कि यार ये क्या किया है उन्होंने। एक्सपेरिमेंट करते हुए आप मैच तो हारोगे, ये बात तो गिवन है। पाकिस्तान ने 3 T20 खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में और तीनों T20 हारे हैं, इस बार ये तोड़ना होगा। हाँ, इस बार ये इस चीज
इस
तोड़नी
दफा ये
पड़ेगी।
मिथन
वो
तोड़ना
तीनों
होगा।
ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही हारे ना आई थिंक, तो उनकी टीम में तो देखो भाई हसन हारिस कहते हैं 3 प्लेयर्स बिल्कुल बकवास है, खुशदिल, इफ्तिखार एंड शान। बस यार अब बैक करना पड़ेगा सर, अब तो बैक करना
वर्ल्ड कप तक
पड़ेगा।
एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक हमें बैक करना पड़ेगा। लेकिन खुशदिल को बैक तो जरा मुश्किल हो जाएगा कप तक। इफ्तिखार का ये है कि इफ्तिखार चलो बॉलिंग ऑप्शन अच्छी। अच्छा इफ्तिखार की बड़ी एक अच्छी चीज ये है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी रहती है, विकेट्स नहीं लेता इतनी वो, है ना। भले ये एक अच्छा उसका एक
उसको
पॉजिटिव
बॉलिंग
साइड
एज मिला हुआ है इफ्तिखार को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वरना इफ्तिखार पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा होता। अभी उसको बॉलिंग का एक एज है, खुशदिल से क्योंकि बॉलिंग कराई नहीं तो वो बिल्कुल एक चीज होगी। अच्छा जी, राबी साहब कहते हैं इन ऑस्ट्रेलिया में भी खुशदिल शाह गुड बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि ही इज बेटर देन आसिफ अली। सर ये राबी साहब का ओपिनियन है, ऑस्ट्रेलिया
यार।
एंड इंग्लैंड हाई वोल्टेज, बिल्कुल उस अभी सीरीज पे उस पे आते हैं, बिल्कुल हमारा भी ये उसका पार्ट है। आजम खान, शोएब मलिक बेस्ट प्लेयर फॉर मिडिल ऑर्डर, हसन हारिस कह रहे हैं। यार बिल्कुल, अब देखो वर्ल्ड कप से इतने पहले अब आप ये जो करना था ये एशिया कप में करना चाहिए था, ठीक है, अब इट्स टू लेट नाउ। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि शोएब मलिक किसी इंजर्ड प्लेयर की जगह आ जाए, तो क्या ख्याल है उमर, क्या कहते हो?
यार नहीं यार, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है शोएब मलिक का आना। और यार उसपे मोहम्मद वसीम ने भी तो क्लेरिफिकेशन दे दी थी ना, जब उनसे पूछा गया था कि यार आप शोएब मलिक को नहीं ला रहे, तो उन्होंने कहा था कि पहले ही हमारे पास हाई विकेट्स हैं, वो हाई वैल्यू प्लेयर्स हैं टीम में। तो मेरा नहीं ख्याल
लेकिन वो आर्गुमेंट
शोएब
ठीक
मलिक
नहीं
को
था यार,
ऐसे।
क्योंकि वो स्ट्राइक रेट तो शोएब मलिक की ठीक स्ट्राइक रेट है नीचे दरमियान में खेलते हुए।
यार बस अब उनका माइंडसेट है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद इनकी जगह बनाना मुश्किल होगा वर्ल्ड कप में।
अच्छा, ये जल्दी से कमेंट लेते हैं और फिर एक दो कमेंट लेते हैं फिर बाकी बाद में लेते हैं, वरना हमारी वीडियो कमेंट में ही निकल जाएगी। अच्छा, ये इशफाक भाई के लिखते हैं, 1, 2, 3 नंबर के तीनों खिलाड़ी सेम ही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों ओडीआई मैच की तरह खेलते हैं, मिसबा की रूह अब तक पाकिस्तान क्रिकेट। बस यार ये इनको
ये बात जेन्युइन की है मतलब।
मिसबा जो है ना, मिसबा जो है इनकी जो है ना बेचारों का भूल नहीं रहा इनको मिसबा किसी तरीके से।
अच्छा मैं भी इनके माइंडसेट से थोड़ा ना एग्री करता हूँ। आपका जो ये 1, 2, 3 की बात की है ना, आपका सेकंड वाली जो ऑप्शन है ना, सेकंड में कोई आपके पास आना चाहिए जो 130 140 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, उस तरह का प्लेयर आना चाहिए ताकि, और जो थर्ड ऑन है वहां पे तो बाबर आजम भी फिट है, मतलब उस पर तो कोई नहीं, क्योंकि अगर बाबर आजम आते हैं थर्ड डाउन तो आपका मिडल ऑर्डर भी स्टेबल हो जाएगा थोड़ा, और टॉप ऑर्डर भी आपका सही रहेगा।
नहीं नहीं बिल्कुल सही बात कर रहे हो यार। अब मसला ये है ना, अब हमारे पास बैटर उस तरह के हैं नहीं, तो अब हम क्या उस पर रोएं बैठ के करें। अभी आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम ही नज़र आ रही है अभी, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पे हमने काफ़ी बात कर ली, आगे और भी बात कर लेंगे अगर कुछ करनी हुई पॉइंट हमारा। लेकिन ये अभी भाई ने ये बोला था, इधर कौन से भाई ने कमेंट मारा था, वुडू पार्क ने, कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में हाई वोल्टेज गेम हो रही है, ठीक है। और वो हमने देखा भी उमेर साहब के डायनामिक बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की नज़र आ रही थी, कसम खुदा की आप वो उठा के देखो शुरू से लेके वेड तक, तो हर बंदे ही मैच विनर है, लेकिन स्टिल इंग्लैंड पेल गया
यार। इंग्लैंड की मैं बोलता हूँ किस्मत अच्छी थी, जो सेकंड मैच पे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को 3 ओवरों में 34 चाहिए था, तो वहां पे एक ओवर अच्छा निकाल दिया, आई थिंक उसने निकाला था, सैम कुरन ने निकाला था,
सैम कुरन
है उसने, तो वो
टिम डेविड का आउट किया
था, विकेट वहां पे टिम डेविड की विकेट ना गिरती तो ऑस्ट्रेलिया ले जाता। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा डायनेमिक है, मतलब के ना उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन कमिंस तक आपके जो काफी ज्यादा स्ट्राइकर्स हैं, मतलब के वो मार सकते हैं। और वेट का तो पता ही, हमने इंडिया में भी देख लिया वो खेलता है, इवन हमने सेमीफाइनल में भी देख लिया था,
तो हमसे ज्यादा तो किसको पता वेट का यार हर किसी ने हल्का लिया हुआ था वेट का, कैरियर खत्म है, उसने आगे एंड में ऐसे धोना शुरू कर दिया आजकल।
बिल्कुल सही बात, अभी तो जलाल कैमरॉन ग्रीन नहीं है स्क्वाड में,
हाँ
लेकिन वो आए भी तो किसकी जगह आया यार, क्या कहते हैं
यार, अभी स्मिथ की जगह नहीं बन रही। देखो ये जो इस मैच में 11 खिलाई थी ऑस्ट्रेलिया ने, ये तो बिल्कुल वही वाली लग रही है जो ये शायद वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। अब इंग्लैंड की ऑन पेपर उस तरह टीम नहीं लग रही जिस तरह पहले इंग्लैंड की लग रही थी, लेकिन इंग्लैंड जो है वो स्मार्ट क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि उनको अब नज़र आ गया, उन्होंने प्लेयर्स डेवलप कर दिए हैं, डिफरेंट नंबर्स पे बैटर्स ये बैटिंग कर चुके हैं, मैच सिचुएशन का पता है। इवन दो विकटें गिर गई इनकी, मोइन अली डेविड मिलान की एक्सेप्शनल बैटिंग, और जहां आपने बोला लकी रहे वहां कैचेस छुटे इंग्लैंड के बैटर्स के, तो वो वाकई लक वाला फैक्टर थोड़ा साथ कर गया। लेकिन भाई उमेर साहब तारीफ करनी होगी डेविड मिलान पे, क्रिटिसिज्म उन पे भी होता है स्ट्राइक रेट का, ठीक है उन पे भी होता है, लेकिन वो जो लास्ट पाकिस्तान वाला मैचेस खेले हैं और फिर अब खेले हैं, तो बहुत ज्यादा उनका क्लास का डिफरेंस नजर आया भाई।
यार बिल्कुल क्लास की डिफरेंस नजर आया, और मेरे ख्याल में जो 178 तक ये गए उसमें मिलान का बहुत ज्यादा बहुत अच्छा रोल था, इनको लेके चल रहा था। अच्छा जलाल एक और बड़े मजे की चीज थी जो ये मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, आपने देखा होगा 4 आउट हो गए थे इनके 60-70 रन में, 4 से 5 आउट, हाँ इनके 4 आउट हो गए थे ना, 4 for 54 हो गए थे, हैरी ब्रूक आउट हो गए थे जब 8.1 ओवर्स में, ठीक है। अब आप देखिए 8.1 ओवर्स में 4 आउट है और 54 स्कोर है, 16 ओवरों में जाके 146 स्कोर होता है, मतलब के 8 ओवरों में तकरीबन ये 93-97 रन मार रहे हैं। और आप देखेंगे ये होता है, ये प्रॉपर टीम है ना जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार आपका मिडल ऑर्डर भी छक्के मारेगा, सब कुछ अच्छा, अच्छी इनिंग लेके।
अच्छा और मजेदार बात ये है कि ये इत्तेफाक नहीं है, इंग्लैंड की इस टीम से आप पिछले 3-4 सालों से देखो तो ये ऐसी सिचुएशन से मैच निकालते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। आप टेस्ट मैचेस भी देखो जो अभी रिसेंट पास्ट में भी हुए हैं, हारे हुए टेस्ट मैचेस जीते हैं ये लोग। तो इस टीम में वो बिलीफ है, वो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम किसी भी सिचुएशन से मैच निकाल सकते हैं। वो हमने इंग्लैंड वाली सीरीज अपनी सीरीज में भी देखा है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब हमारे विकटें गिरती हैं तो हमें वो बिलीफ नज़र नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, जो इधर नज़र आ रहा है। एक आध कमेंट्स लेते हैं उमेर साहब, क्योंकि अदरवाइज जो है ना मामला ये हो जाएगा कि कमेंट ज़्यादा निकल जाएंगे,
ज़्यादा हो जाएंगे
और हम लोग जो है ना फिर पीछे रह जाएंगे। सो कहाँ था आखिरी कमेंट,
ये क्रिकेट 360 का था ना, पाकिस्तान का कोच फॉर्मर होना चाहिए। अच्छा यार बात तो आपने वैसे अच्छी की है काफी।
अच्छा अब ये सिर्फ
का दौर मुझे याद आ गया,
ये सिर्फ कोच की बात हो रही है या ये मीडिया हैंडलिंग की बात भी हो रही है, क्योंकि मीडिया हैंडलिंग बड़ी कमाल की करते हैं हमारे ये जो कोचिंग स्टाफ वाले, अल्लाह माफ ही करे वैसे है।
सही बात है, बाकी वो यार इन्होंने इन्होंने बात की तो मुझे मिकी आर्थर याद आ गया यार जलाल, उन्होंने काफी एक अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए।
बिल्कुल
शान मसूद को भी डेवलप करने वाले वही हैं, और बाबर आजम को भी उन्होंने ही डेवलप किया है, चांसेस दिए हैं, तो
नहीं,
अच्छा
पूरी
रहता है
टीम
फॉर्म
की
में रहेगी
कोर
तो।
यही है। शादाब को भी उन्होंने एज अ लीडरशिप स्किल्स के तौर पे वो पॉइंट आउट करके गए थे कि ये फ्यूचर में पाकिस्तान का कप्तान बन सकता है। बहुत सारे प्लेयर्स को उन्होंने कोर बनाया, सिर्फ ये है कि जो उसमें कोर टीम में से इमाद हसन अली और फहीम अशरफ, ये तीन बंदे मिसिंग हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट टीम तो वही बना के गए हैं। बाकी अब क्रेडिट जो भी
अच्छा
लेता
जलाल,
है।
यहाँ पे आपने उसकी बात की ना, ऑलराउंडर जो है हमारे मोहम्मद इमाद वसीम है ना,
हाँ
तो इमाद वसीम की कमी मुझे बड़ी महसूस हुई ये वाले मैच में जो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। इसमें अगर वो शुरू में आके बॉल करा देते हैं, वहां पे थोड़ा मुझे एहसास हुआ कि यार इमाद वसीम जैसा बॉलर एक हो, ताकि शुरू में ही विकेट गिराए इस तरह की
अच्छा,
चीजें।
लेकिन इस पिच पे आई थिंक इमाद वसीम को भी पड़ जानी थी, क्योंकि वो स्किडी टाइप बॉलर है, उनकी थोड़ी पेस ज्यादा होती है। इधर शायद पिच पे थोड़ा स्लो बॉलर काम आता है, जैसे ब्रेसवेल बहुत स्लो करा रहा था और उसको बाउंस भी ज्यादा मिल रहा था, लंबा है यार वो।
अच्छा
अच्छा हसन आरिस क्या कहते हैं भाई, व्हाट वाज द लैक ऑफ टू मैडमिन इफ्तखार एंड खुशदिल द थर्ड मेनियक शान मसूद आल्सो केम टू द टीम, दिस इज द क्रिकेट टीम और द मैड हाउस ऑफ बरेली। अच्छा ये मैंने कमेंट आपका पहले भी मुझे याद पड़ता है, आपने कोई किया था ये। अच्छा,
एक और कमेंट इनका नीचे है।
इफ दिस टीम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले द वर्ल्ड कप देन स्वेयर अल्लाह दिस टीम विल बी द फर्स्ट टू बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। यार ऐसे ना किया करो भाई,
यार
बैक
ऐसे ना
करो, बैक
बोले,
करो भाई।
यार ऐसे ना बोले, बैक
अच्छा, पहला मैच बहुत
करें।
इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए, टोन सेट करने के लिए, क्योंकि इतना हाई प्रेशर मैच, जोन सी टीम जीत गई आई थिंक वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी।
यार हाँ इम्पोर्टेंट तो है, जाहिर है पाकिस्तान की एक टीम में साउथ अफ्रीका भी है तो, और ऊपर से दो टीमों ने जाना है तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यार मुझे इंडिया के बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है, वाइब आ रही है एक कि
यार ये
इंडिया
देखो
जो
ना
है हारने
कि
लगेगी।
प्रेशर इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा इस मैच का प्रेशर होता है कि लास्ट वर्ल्ड कप में आपने देखा कि इंडिया जब पाकिस्तान से हारी है तो रिकवर नहीं कर सकी। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान एज वेल। एक तो मीडिया प्रेशर इतना होता है, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है, पहला मैच अगर इतना बड़ा आप हार जाओ ना, तो वो आप उस हार से मेंटली निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो दोनों टीम के लिए आई थिंक बड़ा क्रूशल है। इंडिया पे मुझे सिर्फ ये है कि इंडिया से ना एक्सपेक्टेशंस का बोझ अब इंडिया के ऊपर हो गया है। 1990s में क्या होता था, मुझे लगता है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इस जैसे हारता था क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि पाकिस्तान हराएगा इंडिया को, क्योंकि उस टाइम के ऊपर 90s में पाकिस्तान की टीम बहुत लीथल थी। वो एक्सपेक्टेशन का बोझ शायद हमारे ऊपर पड़ता था और हम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते थे। अब वो बोझ शिफ्ट हो गया, अब वो एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती कि पाकिस्तान जीतेगा, अब ये एक्सपेक्टेशन है इंडिया ही जीतेगा क्योंकि उनकी टीम ऑन पेपर बहुत बेहतर है।
बिल्कुल ऐसा है। आप भी यार ये जो मैच है जहां पे मेलबर्न में ना, ये तो वाला ग्राउंड भी बड़ा फिट है, तो मजा आएगा देखने का वैसे।
1 लाख एक बंदे की कैपेसिटी है भाई, सोचो होगा क्या, आवाज ही नहीं आएगी।
अच्छा
रनिंग बिटवीन द विकेट मजेदार होगी, चाचू को खिला लेंगे और पीसीबी के सामने शोएब मलिक बुढ़ा है क्या, मोटा दिमाग है चीफ सेलेक्टर। यार
यार चीफ सेलेक्टर, खैर इन्होंने अच्छे इंटरव्यू दिए जब वो बाद में आए, मतलब कि उन्होंने एडमिट किए हैं जो जो मिस्टेक्स हो रही हैं टीम में, उन जैसा वो कह रहे थे कि शादाब को ऊपर लाना चाहिए, ये बात भी की उन्होंने। फिर वही एक और, फिर वहां पर उन्होंने फोर्थ सीमर की भी बात की
हाँ
कि मोहम्मद वसीम को हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं एज ऑलराउंडर, तो मेरे ख्याल में थोड़ी अच्छी बातें स्टार्ट होगी
देखो,
उनकी।
सरफराज वाले क्वेश्चन पे कि सरफराज की नॉन सिलेक्शन इंस्टेड ऑफ हारिस और इमाद वसीम की नॉन सिलेक्शन पर वो कोई खातिर खा कन्विंस नहीं कर सके। शोएब मलिक का भी समझ आता है, वो कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बाउंसी विकेट्स पे वो नहीं उस तरह चलते और हमने यंग प्लेयर्स को देना, चलो मेरी नज़र में वो भी एक फ्लॉड आर्गूमेंट है, लेकिन स्टिल एक आर्गूमेंट बनता है। इमाद वसीम और सरफराज पे तो वो बिल्कुल कन्विंसिंग जवाब नहीं दे सके।
हाँ
हाँ
उस पे तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया था इमाद वसीम वाली बात पे। बिल्कुल
वो मुझे लगता है एटीट्यूड की वजह से ही कुछ चक्कर है इमाद का। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड मे बी प्ले फाइनल दिस वर्ल्ड कप, इंग्लैंड विल विन। देखते हैं सर जी, आप आगे चले गए बड़ी जल्दी, हल्का ले रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को, आप हल्का ले रहे हैं भाई, कभी हल्का नहीं लेने का, सब इवन श्रीलंका को हल्का नहीं लेने का भाई, अभी बजा के गई है हमारी ताजा ताजा।
यार साउथ अफ्रीका को भी हल्का नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में।
हाँ उनको भी नहीं लेना चाहिए। इशफाक अली कहते हैं पहले बैटिंग करते हुए बाबर आजम को पता नहीं होता कि टारगेट क्या रखा जाए, फिर फैंस दुआ करते रहते हैं कि काश आज भी कोई चमत्कार हो जाए, बाबर की विल पावर थोड़ी कम है। यार देखो, ये अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखोगे ना, इस टाइम के ऊपर हर टीम टारगेट सेट करते हुए स्ट्रगल कर रही है, तभी बैटिंग सेकंड में विनिंग जो रेशियो है ना वो ड्रास्टिकली बढ़ गया है। अब क्रिकेट चेंज हो रही है, पहले हम देखते थे कि जी टारगेट सेट करो और फिर डिफेंड कर लो, अब जरा थोड़ा चेंज हो रहा है क्रिकेट।
यार हाँ सही कह रहे हैं, चेंज हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि यार बाबर आजम को थोड़ा मतलब शायद अभी मैच्योर नहीं है उनकी कैप्टेंसी इतनी, उस तरह उनका लीडरशिप स्किल्स नहीं है कि वो रन टाइम पे अच्छे डिसीजंस ले सके।
यार
अगर ये
लेकिन
चीज
सेना
वो
कंट्रीज
इन
में
ऑफ कर
बाबर का
सकते हैं
स्ट्राइक रेट तो सबसे बेहतर है, मतलब इवन
नहीं,
विराट
स्ट्राइक
कोहली,
रेट की
रोहित
बात
शर्मा,
नहीं
उन
कर रहा,
सबसे बेहतर है।
नहीं, स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहा, उसकी वो कैप्टेंसी की बात करूं कि रन टाइम पे जो डिसीजंस होते हैं
हाँ
वो
लेकिन वो
वाला
ये
थोड़ा
कह रहा
मुझे
है ना कि
लगता है।
पहली बैटिंग करते हुए बाबर को पता नहीं होता कि टारगेट क्या रखा जाए। मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि
अच्छा
बाबर तो
आप उस हिसाब से कह रहे हैं
उसकी स्ट्राइक रेट वगैरह का सेना कंट्रीज में तो मसला नहीं है।
यार, उस हिसाब में बाबर इस तरह सही है कि अगर उसे लग नहीं रही होती वो आउट हो जाता, वो मतलब बॉले नहीं मिस करता।
हाँ आजकल उसने ये चालाकी स्टार्ट की हुई है कि वो मार के आउट हो जाते हैं।
हाँ
रिजवान थोड़ा है कि वो
आउट हो
खड़ा
जाता,
रहता है। हमारे इंडिया में बेरली का पागल खाना है, उसके पागल खाने में खुशदिल इफ्तिखार निशान मसूद को भेजना चाहिए ना कि टीम में, वरना ये तीनों मिलकर वर्ल्ड कप हरवा देंगे। ये आप
या
ज्यादा गुस्से हो गए हो भाई।
नहीं यार बस आप दुआ करें, अभी वर्ल्ड कप अगले हफ्ते आ रहा है और ऐसा मौका ना आए और पाकिस्तान पाकिस्तान एटलीस्ट परफॉर्म करे, मतलब कि वो एक होती है ना गेम कि वन साइडेड हो, उस तरह ना हो कि बस परफॉर्म करे, मैच देखने का मजा है, इस तरह होना चाहिए।
यार देखो, वो टीम पाकिस्तानी टीम हो ही नहीं सकती जो वर्ल्ड कप से पहले फेवरेट के टैग पे आ रही हो। हमारी टीम हर दफा स्ट्रगल ही करती है वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है, वरना वो पाकिस्तान ही क्या जिसमें कंसिस्टेंसी नजर आए।
बस
92 के वर्ल्ड कप से
वो
पहले सारे गालियां
सही
दे रहे थे
बात
इस
है,
टीम को, कोई उम्मीदें नहीं थी, सारे प्रैक्टिस मैच हार गए थे। उस टाइम पे प्रैक्टिस मैच भी बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन वही बात है, लक थोड़ा सा।
बिल्कुल
पाकिस्तानी टीम एक इमोशन ड्रिवन कॉम भी है, नेशन भी है, टीम भी है, ट्रिगर चाहिए होता है
बिल्कुल।
कुछ।
अच्छा यार ये आपने बात की तो मुझे याद आया कि इमरान खान, वो पता नहीं इंजमाम बात कर रहे थे या वसीम बात कर रहे थे, ये लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे तो इनका मैच कोई ऐसे कोई कोई वहां पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि अगर वहां से न्यूजीलैंड जीत जाए या पता नहीं साउथ अफ्रीका जीत जाए तो इन्होंने आगे जाना था, और फिर वहां पे इमरान खान सबको कहता है ड्रेसिंग रूम में कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बस फाइनल मैच की तैयारी करनी है, फाइनल मैच की।
हाँ
तो वहां पे ये जो वसीम कहते हैं हम लोग सोच रहे कि यार ये हमारे कैप्टन साहब क्या कह गए तो वो
पागल
आपने बात सही की, जो इमोशंस वाली बात है ना,
तो
जो इमोशंस वाली बात आपने की है ना वो बिल्कुल सही सेट होती है उसमें।
हाँ नहीं, हमारा ऐसा ही है यार। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए हैं, क्या परफॉर्मेंस दे रही है, वर्ल्ड कप में आगे जाने के चांसेस दिख रहे हैं। यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ना, आप याद रखो, बायलैटरल में ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट टीम, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बीस्ट मोड में आ जाती है। वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया इज लीथल, वो हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देख लिया, आपने कोई चांस ही नहीं दे रहा था ऑस्ट्रेलिया को, कैसे वो वर्ल्ड कप निकाल के गए भाई, वो नेक्स्ट लेवल पे खेलते हैं वर्ल्ड
बिल्कुल
कप में।
बिल्कुल यार, हालांकि मुझे याद है जब मैच हुआ तो जब शाहीन ने पहली वो फर्स्ट ओवर फिंच को आउट किया था तो उसके बाद तो लग रहा था कि यार पाकिस्तान आ गए गेम में, लेकिन वेट्स आप कर गए थे। लेकिन खैर ये यहाँ पे टफ हो सकता है यार, इंग्लैंड भी काफी स्ट्रांग है, उनका भी हर प्लेयर ही उनके यहाँ पे जो भी प्लेयर है वो सब मैच विनिंग प्लेयर्स है, तो टफ टाइम दे सकता है
अच्छा
काफी।
ये बड़ा अच्छा कमेंट किया है क्रिकेट 360 ने, मिकी आर्थर बेस्ट कोच थे लेकिन सरफराज अहमद भी बेस्ट कैप्टन था, प्लेयर्स को बैक करता था और अपनी जगह दूसरे प्लेयर्स को ऊपर खिलाता था। अच्छा इस बात से मेरा इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन सरफराज बाहर भी इस वजह से हुआ है क्योंकि वो अपने से ऊपर दूसरे प्लेयरों को खिलाता था, और उस पर क्रिटिसिज्म भी ये होता था कि भाई आप क्रूशल मैचेस में, ऐसे मैच भी आते थे उमैर साहब कि वो अपने से ऊपर हसन अली को भेजता था क्योंकि उसे लगता था कि हसन अली ज्यादा छक्के मारेगा, मेरे से नहीं मारे जाएंगे। लेकिन फिर वो कप्तान की वैल्यू कम होती जाती है कि भाई फिर आप टीम में हो क्यों, सही है ना, क्वेश्चन रेज होना शुरू हो जाते हैं कि आपकी जरूरत क्या है, जब आपसे बेहतर खेलने वाले मौजूद हैं तो फिर आप सिर्फ टीम में एज अ कैप्टन और विकेट कीपर तो नहीं रह सकते। तो ये मेरा ख्याल है सरफराज का जो डाउनसाइड हुआ वो इसकी वो सेल्फलेसनेस ही थी, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है आपको, या सेल्फिश गलत वर्ड है, ओनरशिप लेनी पड़ती है, दिलेरी दिखानी पड़ती है। राबी साहब ने
अगला
फतवा दिया है भाई,
क्वेश्चन।
एक कहते हैं इन दिस वर्ल्ड कप इंडिया अगेन विल फ्लॉप, रिमेम्बर इट सर, रिमेम्बर द नेम रावी जावेद। हैं
नहीं, ये वैसे आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं रावी साहब, जरा बताए ना, ताकि हम भी अपनी प्रोबेबिलिटी 70 से 50-50 पे ले आए
इनकी,
जो
मुझे
हमने
लगता है
बताई हुई है।
पाकिस्तान से एफिलिएशन की मुझे जो है ना एक वो नजर आ रही है वाइब
वाइब आ रही है
इसमें।
आपको
अच्छा आखिरी
यार
चलते
वैसे।
चलते इस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले मैच पे, एक जो मैंने पॉइंटर लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि हेल्स इवन दो पूरे साल उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शायद डोमेस्टिक में अगर देखा जाए और इंटरनेशनल भी मिला के तो पूरे कैलेंडर ईयर में सबसे हाईएस्ट स्कोर उन्हीं का है, लेकिन वो इतने फ्लुएंट नजर नहीं आ रहे, तो क्या ये एक वरिंग साइन है क्योंकि जेसन रॉय भी नहीं है अब और बेयरस्टो तो वैसे इंजर्ड है।
यार ये वरिंग साइन है, लेकिन मुझे लगता है कि हेल्स अपना कमबैक मार लेंगे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि डोमेस्टिक में काफी अच्छा इनका रिकॉर्ड है, और अभी इनको काफी एक एक अच्छा टाइम तो मिल गया है, पाकिस्तान के खिलाफ भी खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेल लिया, तो ये मेरे ख्याल में आ जाएंगे फॉर्म में, एग्रेसिव होके आएंगे काफी, और अगर ये फॉर्म में आ गए ना तो बस फिर लेवल हो जाना है बटलर इसका
हाँ और
काफी
ये बिग
ज्यादा।
बैश का इनको खेलने का एक्सपीरियंस भी है, बिग बैश में भी अच्छा
हाँ
खेले,
बिल्कुल,
लेकिन देखो पीछे फिल सॉल्ट बैठा हुआ है ये
लेकिन
भी है।
फिल सॉल्ट बैठा हुआ है, लेकिन नहीं यार हेल्स को प्रायोरिटी देंगे, हेल्स
नहीं
को
प्रायोरिटी
मतलब
तो
जिस तरह
देंगे,
लेके
लेकिन
आए
जो
हैं।
फिल सॉल्ट ने आखिरी 2 इनिंग्स में पाकिस्तान में बैटिंग कर दी थी वो तो लग रहा था जैसे हर बॉल भी चौका मार देगा, चौका या छक्का मार दे, तो
जी
वो
वो
भी
उसने अच्छी इनिंग खेली थी, तो हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं जलाल साहब, स्टोक्स के बारे में क्या ख्याल है जो उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला है, उसके उसके बारे में क्या तासुरात है, तासुरात बताएं।
वो जब से उन्होंने ओडीआई की रिटायरमेंट दी है ना लग रहा है कि वो टेस्ट मैच ही समझ रहे थे इसको भी। तो वो टेस्ट मोड में ही लग रहा है खेल रहे थे, अभी उनको मुझे लगता है एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम मिलेगा, और ये अच्छा हो गया कि उनको अभी थोड़े मैचेस मिल रहे हैं और अभी वार्म अप वाला मैच मिल जाएगा। फील्डर तो वो कमाल के हैं, आज भी उन्होंने उस मैच में कितना जबरदस्त एक वो छक्का रोका
काफी अच्छा
था,
यार बचाया
तो
है, बहुत प्यारा छक्का
वो
बचाया।
तो फील्डर तो कमाल के हैं, बॉलर भी ठीक ठाक हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल बॉलर नहीं है, मार उनको पड़ जाती है लेकिन स्टिल यूजफुल बॉलर है।
इन्होंने आज मैं देख रहा था कि ये स्टोक्स ने पहला ओवर भी कराया है, हालांकि ऐसा वो
हाँ
रेयर है ना, बल्कि है ही नहीं मेरे ख्याल में।
हाँ मैं भी सरप्राइज था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि देखो स्टेटिस्टिकली शायद ना ये समझा जाता है T20 में पहला ओवर कराना सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि बैट्समैन या बैटर जो होता है वो टेस्ट आउट कर रहा होता है, पिच का नहीं पता होता, थोड़ा सा जो है वो उतना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके अंदर कि मैं बॉल 1 से मारूंगा, अनलेस और अनटिल आप कोई बटलर टाइप, इमरान नजीर टाइप, शायद अफरीदी टाइप प्लेयर हो तो एक अलग बात है, वो तो क्रिस गेल भी पहली बॉल से मारना शुरू कर दें वो एक अलग बात है, पहला ओवर इजी होता है मेरा ख्याल, इस वजह से वो कराया हल्के बॉलर से थोड़ा।
नहीं लेकिन इसके साथ वो भी है जो होता है ना, कि अगर आपका बॉलर बहुत अच्छा आ गया, बैट्समैन को सेट होने का टाइम नहीं मिला, साथ ही विकटें, क्या
हाँ ये भी आर्गुमेंट है,
कहते हैं।
ये आर्गुमेंट इंडिया में हुआ था ना जब पाकिस्तान वाले मैच में वर्ल्ड कप में बुमराह से पहला ओवर नहीं करवाया था तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था विराट कोहली पे कि आपको विकेटें ही चाहिए और आप पहला ओवर बुमराह से नहीं करवा रहे, तो ये वो काफी बात तो है,
बिल्कुल
बात में दम तो है उस्ताद।
अच्छा
अच्छा इसमें एक और भी है सर, इसमें एक और बात
जी जी
भी है
बताएं।
कि ओवरऑल आप फील्डिंग का देखो तो हम ये देख रहे थे कि इंग्लैंड की टीम इधर पाकिस्तान भी जब आई थी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, कैचेस वैचेस ड्रॉप हो रहे थे, खासतौर पे एलेक्स हेल से तो बहुत ही ज्यादा कैच
ऐसा
ड्रॉप, इस मैच
ही
में
है।
ऑस्ट्रेलिया को आउटफील्ड कर दिया उन्होंने, मतलब तकरीबन 3 या 4 कैचेस ड्रॉप हुए ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इंग्लैंड ने ऑन द अदर हैंड बड़ी कमाल की फील्डिंग की और शायद वही डिफरेंस क्रिएट करगी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया की देखी है फील्डिंग, उन्होंने तो वो कैचेस भी छोड़े हैं, जो मैक्सवेल ने छोड़ा था, फिर आई थिंक वो उसने छोड़ा था, टिम डेविड ने भी छोड़ा था एक,
हाँ मुश्किल
तो
कैच थे
ये वाला
लेकिन
इशू।
स्टिल हो सकते थे। हाँ
हाँ लेकिन बात वही है ना जलाल, अगर आपके जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है वहां पे इस तरह के चांसेस, मेरा नहीं ख्याल के इस तरह होना चाहिए, कैचेस ऑलवेज विन मैचेस, तो इस तरह के मेरे ख्याल में काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कैचेस पकड़े। लेकिन यार मैं उसका कैच पे बड़ा वो सरप्राइज हुआ, जाम्पा के
वो
आपने
तो
तो
बेचारा
यार
इधर उधर इधर
कमाल का
उधर घूम
कैच,
रहा था उसको समझ नहीं आ रही थी,
कमाल का कैच यार,
लेकिन
कमाल
बड़ा
का
मुश्किल
कैच
कैच था,
मतलब
बाकी मुश्किल कैच था वो।
बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ आपको वो याद है बांग्लादेश वाला मैच जो हुआ है जिसमें ट्रेंट बोल्ट आई थिंक बॉलिंग करा रहा था, वो बॉल ऊपर गई है। ऐसा
अच्छा ये
भी होता है यार,
दो
देखिए
तीन फील्डर देखे, चार फील्डर के दरमियान वो कैच है, वो गिर रहा है भाई, हद हो गई है।
सही बात है। चलो, मतलब पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी टीम है मतलब जो इस तरह कर सकती है?
न्यूजीलैंड की फील्डिंग तो इस सीरीज में अभी तक का अप टू द मार्क नहीं है। नॉर्मली न्यूजीलैंड तो वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग यूनिट होता है।
हाँ, बेस्ट फील्डर, सही बात है।
अशफाक अली भाई कहते हैं, भाई कसम ले लो, बाबर आजम की कप्तानी नहीं चलेगी, जिन्हें वो 3 साल से पाल रहा है उन पर बाबर की कप्तानी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। आसिफ अगर 3-4 बॉल्स ही खेलेगा तो हसन को ले लें। यार देखो भाई, अगर वो अच्छी कप्तानी नहीं करेगा, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, तो ठीक है, बाबर आजम की कप्तानी चली जाएगी। अब आपने उसको बनाया है, अब आप उसको बैक करो, चांस दो, अपनी टीम भी खिला रहा है। अब वो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे मेरी मतलब की टीम नहीं मिल रही, जिससे हमने पास्ट में देखा है, कप्तान टूर्नामेंट हारने के बाद कहते हैं कि जी हमें मतलब की टीम नहीं मिली थी। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है यार, अपने मतलब के लड़के खिला रहे तो सही है।
यार एक जलाल वैसे अच्छी चीज हुई है, आपको याद है बाबर आजम की कैप्टेंसी को 3 साल तो हो गए, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए। तो पहले इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं था, पहले खैर हम भी उस तरह नहीं देखते थे, एनालाइज करते थे कि बाबर की कैप्टेंसी का क्या क्या रोल है। लेकिन जब पाकिस्तान हारा है एशिया कप में, हमने देखा उसके बाद हमें फ्लोस कुछ नजर आए ना चीजों पे, तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि वर्ल्ड कप से पहले ये कुछ चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गई, ताकि वो वाले जो आपका जो रूम होता है इम्प्रूवमेंट का वो मिल गया।
यार असल में वर्ल्ड कप में बाबर ने ना ओवरऑल डिसीजन मेकिंग तो बहुत अच्छी की थी, कप्तानी बहुत अच्छी की थी, और अगर आप वर्ल्ड कप में बेस्ट कप्तान दो निकालो तो शायद उनमें बाबर आता था। जो वर्ल्ड कप में बाबर ने एक स्टबर्नेस दिखाई थी, वो यही दिखाई थी कि उसने फखर को और हसन अली को कंसिस्टेंटली वो खिलाता गया, प्लेइंग 11 नहीं उसने चेंज की। लेकिन आप फिर देखो, फखर सेमीफाइनल में परफॉर्म भी कर गया, हसन अली नहीं कर सका परफॉर्म उस तरीके से। तो दोनों रुख हैं उस सिक्के के देखने के लिए कि आपका कुछ डिसीजन पे ऑफ भी कर जाते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो एशिया कप में बहुत डिसअपॉइंटिंग था असल में, उधर से क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा बना है, वहां पे समझ नहीं आई कि बाबर क्या कर रहा है, शायद बैटिंग का प्रेशर था उसके ऊपर।
हाँ, बैटिंग का भी था शायद, शायद वो रनिंग टाइम पे उस तरह डिसीजन, शायद जो वो आपको आपको डायनेमिकली चेंज करनी पड़ती है चीजें वहां पे थोड़ा लैग था। लेकिन वो ये, लेकिन वही बात है आप वाली के वर्ल्ड कप में वहां भी उन्होंने ये सही उसको कवर किया था, प्लेयर्स को बैक किया था, तो ये बड़ा एक सही सीन है।
क्रिकेट 360 साहब कहते हैं, साय मयूब होगा पाकिस्तान टीम का अगला ओपनर। उस्ताद बड़ा बैटिंग की है लड़के ने, अभी सिंध का मैच हो रहा था, किसके साथ, साउदर्न पंजाब के साथ शायद हो रहा था, और 370 समथिंग कितने का वो टारगेट था, और बड़ा क्लोज मैच लेके गए, एंड में मैच ड्रॉ हो गया सिंध का ना, आखिरी इनिंग में चेस कर रहे थे और बहुत ही क्लोज लेके थे, मतलब जीतने की पोजीशन में चले गए थे, आखिरी 13 ओवरों में 60 समथिंग चाहिए था, ठीक है, तो उसमें साय मयूब ने 95 मारे, वो भी मेरा ख्याल है कोई 120-130 गेंदों के पे, तो बड़ा तेज खेल रहे थे, और उमैर ने भी मेरा ख्याल है, उमैर बिन यूसुफ ने 100 मारी है, तो वो भी एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर के लिए। तो मैचेस हो रहे हैं भाई, प्लेयर्स आ रहे हैं पीछे, ऐसा नहीं है प्लेयर्स नहीं आ रहे,
प्लेयर आ रहे हैं। वो तैयब ताहिर यार,
तैयब ताहिर भी है
काफी टैलेंट, लेकिन लेकिन ये टैलेंट हमें तब नजर आएगा खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बाहर हो जाती है पहली राउंड।
यार देखो, मुझे जो अभी वर्ल्ड कप से अलावा अभी हम टेस्ट मैच की तरफ भी आएंगे, पाकिस्तान की मुझे टेस्ट टीम इस टाइम के ऊपर सेटल्ड नहीं लग रही, वहां पे भी हमें बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, आई थिंक अजहर अली और फवाद आलम वगैरह के साथ ना, क्योंकि टेस्ट टीम बड़ी वीक लग रही है बैटिंग यूनिट में, तो वहां पर इन लड़कों को आप चांस दे सकते हो, तैयब ताहिर वगैरह को और बाकी जो लड़के हैं। वुडू पाक कहते हैं, मैथ्यू हेडन को दोबारा कोच बनाने की क्या वजह है? सर वो कोच नहीं बने, वो मेंटोर बने, वो भी सिर्फ एक वर्ल्ड कप के लिए, वही है सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब इतना बड़ा प्लेयर आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है और कुछ टिप्स शेयर करें। कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था माइंडसेट पाकिस्तान का, पाकिस्तान एक डिफरेंट टीम लग रही थी, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेल रही थी, और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हैंडल कर लें।
और वैसे भी देखें ना, ये मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया में होने,
हाँ,
तो ये भी थोड़ा एज होगा उनको बता सकेंगे।
शॉन टेट भी है हमारे पास, ये भी है, तो एक ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का थोड़ा सा हमें वो मिल जाएगा बैटिंग और बॉलिंग। राबी साहब कहते हैं इंडियन मीडिया दे आर डांसिंग एवरी डे अबाउट स्काई विराट केएल राहुल फॉर दैट आई थिंक दे विल फ्लॉप दिस वर्ल्ड कप। पता नहीं यार,
यार मुश्किल है कहना वैसे,
अच्छे बैट्समैन तो ये सारे हैं यार इसमें आप
टाइम सही है।
हाँ
अच्छे हैं, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब के फिट इनकी लाइनअप है। और फ्लॉप, अगर ये फ्लॉप होंगे वही, ये वही बात है जलाल वाली के, अगर इंडिया फ्लॉप होता है तो बॉलिंग की वजह से होगा, बैटिंग की वजह से नहीं इनका कोई चांस लग रहा।
हाँ अगर मतलब ऑड डे बैटर्स का भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आज शाहीन अफरीदी ऊपर से दो तीन फुड़का दे तो एक अलग बात है, वो हो सकता है। आपको पता है लेफ्टी के आगे तो इंडिया की टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता है।
बिल्कुल, वो भी काफी डिबेट चली थी याद है आपको लास्ट
हाँ हाँ
के लेफ्ट आर्म बॉलर वर्सेस इंडियन।
और देखो अभी वेन पार्नल के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा जो सीरीज हुई है, और आप देखो तो अब हर टीम में ऑलमोस्ट खब्बे तो पड़े ही हैं यार, तो इस वजह से सीन थोड़ा है। SS98 साहब आए हैं भाई, वेलकम जी।
क्या
आप
कहते
क्या कहते हैं, उमरान मलिक एंड कुलदीप सेन हैव नॉट ट्रेवल्ड टू ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू सम वीजा इश्यूज, दे आर करंटली प्लेइंग स्मार्ट अच्छा डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट।
ये किसकी बात करें,
उमरान मलिक एंड कुलदीप सेन। अच्छा मुझे भाई कुलदीप सेन का नहीं पता, उमरान मलिक का तो पता है, कुलदीप सेन का मुझे इतना आइडिया नहीं है। इसके बारे में जरा डिटेल बताएं ना SS98 साहब के, ये फास्ट बॉलर हैं और बहुत तेज बॉलर हैं क्योंकि आपने उमरान मलिक के नाम के साथ रखा है इनका, तो क्या इनका स्टेटस है वो भी बताएं प्लीज, हम भी फिर देखते हैं इनको। वर्ल्ड कप में क्रिकेट 360 कहते हैं जिसकी फील्डिंग अच्छी होगी वही टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगा। फील्डिंग किसकी अच्छी है 360 साहब, सबसे ये भी बताएं किसके चांसेस आपको ज्यादा लग रहे हैं, कैचेस तो सारे छोड़ रहे हैं इस टाइम के ऊपर। साउथ अफ्रीका की ये टीम की लग रही है एक अच्छी फील्डिंग यूनिट, वो वर्ल्ड कप जीते नहीं है।
यार वैसे उनका भी एक अजीब ही सीन है, वो भी एक अलग जोन में चले जाते हैं वर्ल्ड कप में। 99 का वर्ल्ड कप देखा है आपने कितना यार वो
जाती हुई है, पिछले वर्ल्ड कप में भी जाती हुई थी बेचारा,
पिछले भी यार जाती हुई है।
हाँ हसन आरिस कहते हैं पाकिस्तान टीम के हार्ड हिटर नंबर 1 शान मसूद, नंबर 2 इफ्तिखार अहमद, नंबर 3 खुशदिल शाह, मजे ले रहे हैं भाई
यार। ये वाली चीज में अप्लॉज होना चाहिए यार, ये वाली चीज में अप्लॉज होना चाहिए।
ये ले हसन आरिस साहब आप मजे ले ले, हमारी है
ले ले मजे। हसन आरिस साहब के चार हैं कि पाकिस्तान जो है ना ना ही जीते वर्ल्ड कप,
वो कहते हैं इनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट तो उमर गुल का हुआ करता था।
आपको याद है उनका नाम भी आ गया था गुलडोजर,
अफ्रीका के अगेंस्ट जब यार वो बैटिंग एंड में अच्छी करनी शुरू हो गए थे, उनकी टाइमिंग बड़ी अच्छी हो जाती थी बॉल।
अच्छा वो भी T20 के बड़े क्लास के बॉलर थे यार, उनके यॉर्कर याद है आपको वर्ल्ड कप वाले।
हाँ हाँ यार वो तो टॉप क्लास, मतलब टॉप अगर 5 बॉलर्स में उनका नाम हमेशा आएगा ही। अच्छा अब आते हैं बैक टू द टॉपिक सर, जो मिस हो गया मैं तो भूल ही गया इसको। देखो SS98 भाई हमें याद करा देते होते हैं, लॉर्ड शरदुल ठाकुर हैज अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया शुड प्ले हिम इफ दे वांट टू विन द वर्ल्ड कप, रिप्लेसमेंट अनाउंस हुई है भाई रिजर्व्स की।
हाँ जी,
वो तो भूल गया आप,
तीन लोग अनाउंस हुए हैं। हाँ दीदी बिल्कुल, तीन लोग अनाउंस हुए हैं, शमी है, सिराज है और ये ठाकुर है, इन तीनों में से कोई एक बंदा एक्सपेक्टेड है कि उसकी जगह खेलेगा बुमराह की। और सैड न्यूज ये है कि बिश्नोई और बिश्नोई वापस आ रहे, खैर वो तो गए नहीं होंगे अभी तक, वो मतलब कि वो रिजर्व प्ले से हट गए। हालांकि मुझे नहीं समझ आई जलाल साहब, बिश्नोई को हम लोग कितने उसको हमने फॉलो किया है पिछले 2-3 महीने में, और हर मैच में अच्छी बॉलिंग कराता गया, अब पता नहीं क्या चल रहा है उधर भी।
यार विकेट टेकर बॉलर है ठीक है, अश्विन आपको एक वो स्टेबिलिटी दे देते हैं लेकिन बिश्नोई आपको विकेट्स लेके देता है ठीक है, तो समझ नहीं आई बिश्नोई के साथ इतनी इस तरह क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब लॉजिक नहीं समझ आई। और देखो बुमराह की रिप्लेसमेंट के लिए 3 अनाउंस कर दिए हैं, एक एक बंदे के पीछे 3 अनाउंस कर दिए हैं, तो इसकी भी मुझे वैसे लॉजिक समझ नहीं आई 3 पेसर्स की। क्या इसलिए अनाउंस किया है क्योंकि मैं सुन रहा था शायद कि अर्शदीप की भी बैक का इशू चल रहा है, भूवी का भी कोई निगल चल रहा है, तो शायद वो भी एक कंसर्न है। हर्षल भी अभी ताज़ा ताज़ा इंजरी से वापस आए हैं, तो मे बी इंडिया भी कॉन्फिडेंट नहीं है अपने पेसर्स से, इस वजह से शायद वो ये तीनों को
बिल्कुल
लेके जा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल यार, इनका बड़ा इशू है बॉलिंग का, ये बॉलर्स का, तो अच्छा डिसीजन है वैसे कि ये तीन इसी तरह बंदे लेके जा रहे हैं एज अ बॉलर ही, क्योंकि बैट्समैन तो इनके पास हैं और वो फिट हैं।
हाँ अच्छा है, मुझे शार्दुल काशिया से अच्छा लगा कि अगर पांड्या को कुछ होता है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली तो नहीं बोलना
पांड्या
चाहिए,
बहुत ज्यादा
लेकिन
इम्पैक्ट डाल सकता है जिला जी वैसे वर्ल्ड कप
पांड्या तो यार इंडिया की इस टाइम के ऊपर दो ही प्लेयर हैं जो सबसे पहले जिनका आप नाम लिखोगे, आप पांड्या और स्काई का नाम ही लिखोगे टीम में।
बिल्कुल।
वुडू पाक कहते हैं कि जी हाँ श्रीलंका की फील्डिंग भी हॉट है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी एक डार्क हॉर्स होंगे इस वर्ल्ड कप के।
यार ये हमेशा एक डार्क हॉर्स बन जाते हैं। आपको याद होगा एशिया कप जब स्टार्ट हुआ पहला मैच हार गए, फिर उसके बाद ऐसा कमबैक मारा कि बस हिलने
ये भी
नहीं दिया किसी
इमोशन
और टीम
ड्रिवन है
को।
यार। अच्छा ये कहते हैं कुलदीप सेन वाज आल्सो विद द टीम एज अ नेट बॉलर इन द एशिया कप, बॉल्स एट एन एवरेज ऑफ 145 केपीएच, प्लेड फॉर
अच्छा
राजस्थान रॉयल्स इन द लास्ट आईपीएल सीजन। अच्छा, फिर तो
यार
देखना
ये
पड़ेगा
देखना
सर।
पड़ेगा इस बंदे को कुलदीप
ये राइट आर्म
सेन।
फास्ट बॉलर है SS98 साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, अगर एवरेज स्पीड 145 है तो फिर
मतलब
तो
चलने इंडिया के पास पर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आ रहा है आगे।
यार। इनके एक वो अंडर 19 का भी तो बॉलर था, उसका क्या नाम था, वो KKR की टीम में आया था, वो भी बड़ा तेज बॉलर था, नाम यार SS98 था आप बताइएगा, यंग बॉलर था, इंजर्ड हो गए थे फिर और KKR ने सेलेक्ट किया था, वो गायब हो गए, वो बड़ी तेज बॉलिंग कराते थे, वो तो अंडर 19 में भी 90 माइल्स के करीब करा देते थे। अच्छा
अच्छा, इनका स्टैट मैंने निकाला है कुलदीप रामपल सेन का, ये राजस्थान रॉयल्स ही खेले हुए, बिल्कुल सही बता रहे हैं वो। फर्स्ट क्लास में 17 मैचेस खेल के 52 विकेट्स हैं इनकी,
ओ
एवरेज
खैर हो
ट्वेंटी
जाए।
एट की है और 3 की इकोनमी है, खैर वो तो फर्स्ट क्लास है। और ये T20 में 27 मैचेस में 20 विकेटें हैं और इकोनमी 8.74 की है। इकोनमी थोड़ी एक्सपेंसिव
बिल्कुल बिल्कुल,
है
कमलेश नागर कोटी, एग्जैक्टली सर, ये इसी
ये
बॉलर की मैं
बंदा
बात कर रहा था। ये कहाँ है SS98 साहब, ये सीन से गायब हो गए, इनकी बड़ी हाइप बन रही थी, ये लड़का बड़ा तेज बॉलिंग कराता था, गायब हो गया ये। अच्छा अशफाक अली कहते हैं कि भाई सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिताने के लिए नंबर 7 तक चला गया था, मगर बाबर अपनी अना नहीं छोड़ रहे उन्हें ICC गोद में जो बैठना है। यार मैं आपको वही बोलूंगा, सरफराज अहमद टीम में टीम से बाहर भी इसीलिए हुए कि वो नंबर 7 पे चले गए। देखो कप्तान पाकिस्तान टीम का वही बन सकता है जो परफॉर्म करता है, सरफराज अगर बैटिंग ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे टीम में रहेंगे भाई, वही मसला चल रहा था ना उनका। ओनरशिप लेनी चाहिए ना कप्तान को। इमरान खान लास्ट 40 साल से ऊपर होके 92 के वर्ल्ड कप में आते हैं, कंधा उनका उतरा हुआ है, इंजेक्शन लगा के आ रहे हैं, वन डाउन आते हैं जो पहले वो नहीं आते थे कभी भी बैटिंग करते हुए, उस टूर्नामेंट में वो आए, क्यों आए, क्योंकि दोनों एंड पे नई गेंदे लगी हुई थी, उन्होंने कहा भाई स्विंग एक दफा हमने बॉल पुरानी कर दी तो नीचे मेरे पास इंजमाम मोइन शोइन सारे बैठे हुए वो मार देंगे, तो वो उन्होंने देखो ओनरशिप ली और उसका रिजल्ट मिला। अब कप्तान को तो फ्रंट से लीड करना चाहिए,
यार
बाबर पे आप ये नहीं
ओनरशिप
कह
से
सकते कि फ्रंट
मुझे
से लीड नहीं करता, ओपनर आता है भाई।
ओनरशिप से बिल्कुल ओपनर आता है। हाँ ठीक है वो सही है। अच्छा एक और जलाल बात याद है ओनरशिप से आपकी ना, धोनी का आपको फाइनल याद होगा वर्ल्ड कप का, कि युवराज सिंह उस टाइम फॉर्म में थे काफी
बिल्कुल
सही
बिल्कुल
है, और लेकिन उस टाइम पे उन्होंने देखा सामने बिठाया मुरलीधरन है, उन्होंने मतलब एक वहां पे एकदम उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जाना चाहिए, तो
हाँ,
अच्छा
कुछ
था
लोग कहते हैं कि
डिसीजन।
सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि अगर राइटी आउट हो तो राइटी जाए, लेफ्टी आउट हो तो लेफ्टी जाए, इस वजह से धोनी गए थे। आई
अच्छा
थिंक कोहली आउट हुए थे
सही
तो धोनी
थ्योरी।
गए थे शायद,
हाँ
तो
कोहली आउट हुआ था बिल्कुल।
हाँ
अच्छा वहां ये भी मैंने सुना है कि युवराज सिंह और इनकी होगी थी काफी इस बात पे लड़ाई कि ये धोनी और युवराज की, कि युवराज को ऊपर क्यों नहीं भेजा गया, मतलब इस पे भी हुआ है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज।
आप मुझे इसकी गारंटी नहीं है, मुश्किल है, दोनों दोस्त थे, ये हो सकता है कि युवराज सिंह सरप्राइज होंगे भाई मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट चल रहा हूँ और मुझे नहीं भेज रहे, तो ये हो सकता है, हसन आरी साहब कहते हैं पाकिस्तान हैज वन द T20 वर्ल्ड कप 2022। मेरी दुआ है ऐसे ही कुछ लफ्ज हो कमेंटेटर्स के। भाई मजे लेके अब आप एंड में ये बातें कर रहे हैं।
नहीं चले, लेकिन शुक्र है कर रहे हैं, शुक्र है कर रहे हैं, इंशाल्लाह भी लिखते हैं।
इफ्ती चाचू वाचू सबके मजे ले लिया आपने और एंड में आप कहते हो कि भाई वर्ल्ड कप जिता रहे हो आप। हैं
इफ्ती साहब के तो छक्के देखने हैं यार हमने, कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े मशहूर छक्के हैं उनके।
मेरा ख्याल है थोड़ी बाउंड्री अंदर करनी पड़ेगी जिस हिसाब से लास्ट टाइम पाकिस्तान खेला लास्ट में। कुलदीप यादव को वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्यों शामिल नहीं किया अच्छे बॉलर? यार ये वैसे बात जेन्युइन है, उनको चांस भी कम मिला है। मतलब अगर आप पुरानी सीरीज वेस्ट इंडीज वगैरह में भी देखो तो मेरा ख्याल है एक आध मैच ही उनको मिला, बाकी ज्यादा मैचेस उनको दिए भी नहीं। मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस नहीं है टीम का अभी कुलदीप यादव के ऊपर, कि उनके मेंटल इश्यूज भी चल रहे थे पहले, फिर आईपीएल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा कमबैक किया। धोनी के टाइम पे तो वो बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे, उसके बाद थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस इश्यूज आने शुरू हो गए थे। और कोई है मैं साहब कमेंट जो आपको नजर आ रहा जो मिस हो गया?
एक मिनट, आप यार मेरे विंडो नहीं खोली हुई, क्रिकेट 360 का लास्ट आया हुआ है। कुलदीप यादव को वर्ल्ड कप का स्क्वाड में क्यों शामिल, ये तो हो गया ठीक है, नहीं और कोई कमेंट नहीं है। जनाब साहब मुझे आप ये बताएं, चले अभी तो आगे आ रहा है, फाइनल आ रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड, तो उसके बारे में क्या तासुरात है कि क्या सिचुएशन लग रही है आपको?
पाकिस्तान अब ट्रिकी हो गया यार, पहले न्यूजीलैंड को मैं हल्का ले गया था थोड़ा, न्यूजीलैंड जिस तरीके से खेल रहा था लैक ऑफ इंटेंट के साथ तो मैं हल्का ले गया था। अब लग रहा है मैच टफ होगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ क्या जाते हैं, क्योंकि दहानी पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, बड़ी दहानी मीडियोक्रेसी बॉलिंग कर रहा है।
बहुत पड़ी, सही बात है, बहुत पड़ी उसको।
आई थिंक हसनैन और नसीम वापस आए, हारिस वापस आए, अब आई डोंट नो मोहम्मद वसीम का क्या बनेगा। मैं तो चाहता हूँ फोर सीमर के साथ जाए ये फाइनल में, हैदर शान और आसिम में से एक को बिठाएं उसकी जगह मोहम्मद वसीम को डालें।
लेकिन वही बात है, है तो आपने जो सिनेरियो बताया बड़ा फिट है, लेकिन वही बात है कि ये बिठाएं किसकी जगह, क्या कहते हैं अगर फोर्थ इन्होंने खिलाना है सीमर तो कौन बैठेगा, हैदर बैठेगा, शान बैठेगा या आसिफ बैठेगा?
यार मुझे लगता है छुरी अगर चली तो हैदर पे ही चलेगी,
ठीक है,
क्योंकि आसिफ में वो एक्स फैक्टर आपको नजर आता है चाहे वो स्कोर करे या ना करे, एक हाइप बनी हुई है कि जी ये एंड में आके मार देता है। और इफ्तिखार को तो बॉलिंग का एडवांटेज है कि ऑफ स्पिन करा लेते हैं, तो वो तो उस उन पे छुरी चलेगी नहीं। शान मसूद तीसरे पे बैटिंग करते हैं तो तीसरा आपके पास और कोई है नहीं, अनेस और अंटिल आप शादाब को तीसरे पे भेजो,
शादाब को
तीसरा कोई है नहीं, तो शान भी मेरा निकाल निकल सकते, तो हैदर ही बचता है आपके पास जहां पे आप चौथा सीमर डाल सकते हो।
बाकी आपको लाइनअप के बारे में क्या लगता है कि जो शादाब ही सेकंड डाउन बेहतर ऑप्शन है या वही टिपिकल चलेंगे लोग?
नहीं नहीं लग रहा है बेहतर ऑप्शन लग रही है, और अब उसको थोड़ा सा चांस देना अभी दो मैचों के बाद, तो उसको उसका जज भी नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है मेरा ख्याल है।
हाँ नहीं नहीं बेहतरीन है, मेरा भी वोट आपके साथ है।
लास्ट मैच में नवाज को नीचे किया उन्होंने, वो भी ठीक था, लेकिन आई थिंक वहां पे काउंटर अटैक कर सकता था पाकिस्तान, लेकिन किसी के छक्के ही नहीं लग रहे थे तो क्या करते। अच्छा ये तो हो गया था कुलदीप यादव वाला,
हमारे हिस्से के छक्के भी एलन ने मार दिए ना,
एलन ने मार दिए।
अच्छा यार छक्कों से मुझे याद आया, मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आपने, जिसमें वो बड़े मजे से कहते हैं पता नहीं हमारा बुरा दिन था या उनकी बॉलिंग अच्छी थी, फिर उसके बाद कहते हैं कि शॉटे बिल्कुल मारी है लेकिन कैच हो गए, उन्होंने तो लगता है बहुत ही कैजुअल सीन बनाया हुआ,
छक्के भी हवा में लगते हैं कैचेस भी हवा में होते हैं। यार देखो बात वो
हद है,
बात वो उस तरीके से गलत, अगर आप ओवरऑल देखो तो नहीं कर रहे थे कि दिन अच्छा नहीं था, लेकिन उसको जो अल्फाज है ना बोलने के वो इतने कैजुअल होते हैं और इतने कुदरती निजाम वाले होते हैं कि बंदा कहते हैं यार क्या आप प्रोफेशनल बंदे हो और आप कैसी बात कर रहे हो, तो बात
यही तो
बात ठीक होती है लेकिन उसको बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अर्शदीप के बारे में कुछ कहिए जी, अशफाक साहब कहते हैं यार बड़ा अच्छा बॉलर है, हम तो काफी अरसे से अर्शदीप की बात कर ही रहे हैं। उमर साहब को तो बहुत ही पसंद है, क्यों उमर जी?
मुझे बहुत पसंद, सही बात है यार, इसने जब डेब्यू किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट वही मैच था, तो उसी टाइम मुझे आइडिया हो गया था यार ये इस बंदे में पोटेंशियल है, और ये आगे तक जाएगा। और जिससे हमने एशिया कप में देखा, इसने डेथ ओवर्स कराए काफी बेहतरीन कराए, तो मेरे ख्याल में इतना यंग बंदा और इस तरह के बॉलर इस तरह के ओवर्स करा रहा है तो बड़ी अचीवमेंट है, और ये मेरे ख्याल में काफी आगे जा सकता है अगर कोई और इसकी कोई इंजरी वगैरह नहीं होती तो।
यार मुझे जो है ना असल अर्शदीप का ना, मैं पहले मुझे थोड़ा डाउट था अर्शदीप के ऊपर, लेकिन जो इसने आसिफ अली का कैच छोड़ने के बाद वाला ओवर करवाया ना, उससे मैंने इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा यार इस बंदे में दम है, जो इतने बड़े स्टेज के ऊपर इतना बड़ा कैच, इतना आसान कैच छोड़ा, आपका कप्तान भी आप पे पूरी क्राउड के सामने, पूरी दुनिया के सामने
बिल्कुल
ऐसा चीख रहा है, और आप आके फिर ऐसा ओवर कराते हो, तो वो शो करता है कि बंदे में ना कैरेक्टर है, सही प्रेशर हैंडल कर लेता
बिल्कुल
है। वही चाहिए आपको, ऐसे प्लेयर ही
हाँ
चाहिए जो प्रेशर हैंडल कर सके। शान को
बिल्कुल सही
ओडीआई में
बात
लाओ जी, कहते हैं इश्फाक अली। यार अब शान
यार,
को
बिल्कुल
ओडीआई में, लेकिन जगह
ओडीआई
कहाँ
में भी लाओ,
बनेगी
टेस्ट
उसकी,
में भी लाओ
जगह कहाँ बनेगी
यार,
शान की?
ओडीआई में बन सकती है ना, अगर आपका देखे ना फेस करता है, लेट्स सो फखर आता है, इमाम आता है, फिर बाबर आता है, और बाबर के बाद आ जाए शान।
अभी हमारा चौथा खेलता कौन है ओडीआई में, याद ही नहीं है यार, एक ओडीआई होते कब है, चौथा कौन आता है ओडीआई में
जिला
हमारा?
जी, ये फ्यूचर ऑफ ओडीआई है, जो बातें नहीं हो रही है, मेरे ख्याल में एग्जीक्यूट होने वाली है जल्द,
सर रिजवान आता है
जो
आपका
फ्यूचर
चौथे
है।
पे, भाई आप किधर बात कर रहे हो, शान को कहाँ ला रहे हो आप, शान की नहीं बनती जगह, शान स्क्वाड में होता है एज अ इंस्टेड ऑफ अब्दुल्ला शफीक। आप ये कह सकते हो कि शान ज्यादा डिजर्विंग है ओडीआई स्क्वाड में होने के लिए, तो ये है बात।
नहीं लेकिन अगर इसको ओडीआई खिलाएंगे तो इसको टॉप पे खिलाएंगे।
वो टॉप ही बनता है भाई वो, अब बेचारा अब किधर और
यार
उसको डालें।
वैसे इसके साथ भी सही, चले आगे चलते छोटे बात।
खुशदिल शाह को आकिब जावेद की जरूरत है, उसकी बैटिंग वही स्ट्रांग कर सकता है। आकिब जावेद की डोज की जरूरत है, और उनको वैसे कोई हिकमत स्टार्ट कर देनी चाहिए, हकीमगिरी करें ना अगर आकिब जावेद साहब, प्लेयर
बिल्कुल
ट्रिगर हो जाते हैं उनके बाद।
अच्छा
हसन
जलाल
आरिफ
साहब,
साहब
हमने
कहते हैं
ये
मैं
भी डिस्कस
इंडियन
कर
हूं
लिया,
भाई,
वो
बट
भी काफी अच्छा
पाकिस्तान
है।
क्रिकेट टीम का फैन हूं, खास करके बाबर आजम का, और ना ही मैं मजे नहीं ले रहा हूं, बस मुझे ये तीनों प्लेयर्स पर गुस्सा आता है क्योंकि ये तीनों T20 में टेस्ट खेलते हैं। ये बात ये आपका बात पॉइंट ऑफ व्यू
बात तो
ठीक है,
जेनुअन है, बात तो जेनुअन है,
हम भी
वी टेक
फ्रस्ट्रेट
आवर
होते
वर्ड्स
हैं।
बैक यार। नहीं नहीं बिल्कुल, आप बल्कि हमारी एक दो वीडियोस देखें जो पुरानी, उसमें हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही होगी आपको।
नहीं
बस गालियां नहीं दी
अब
हमने।
हम ये कह रहे हैं कि यार अब यही प्लेयर मोस्टली जाएंगे, एक आध तब्दीली होगी, तो आप बैक करो, अब क्या रोना रोए हर उस वीडियो पे बैठ गए कि जी इसको क्यों डाला, इसको क्यों, नेगेटिविटी अब हर पे तो नहीं हम कर सकते क्रिटिसाइज, आके सेम बात तो हम
बिल्कुल
कर नहीं
ऐसे ही
सकते।
है। अच्छा जलाल साहब, हमने इस पे बात कर ली काफी, अब आप मुझे ये बताएं, आज एक एक आज ताजा खबर आई है कि भाई इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस हो गया, एक टेस्ट मैचेस का पाकिस्तान में होने वाले, ये भी अच्छी खबर है। तो जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके बारे में क्या तासुरात हैं आपके भाई, कि इंग्लैंड के कौन से प्लेयर आए हैं, किनको नहीं आना चाहिए थे, सब सही स्क्वाड है, क्या सिचुएशन है उसकी?
उस्ताद बैसबॉल स्क्वाड बना दिया उन्होंने, ठीक है, ऐसे
बस
लग रहा है कि तबाही मचाने आ रही है इंग्लैंड पाकिस्तान, सही है, मतलब लिविंगस्टन को भी डाल दिया उन्होंने, कहा बेस तो नहीं है तो अब
हाँ,
लिविंगस्टन को डालो, सही है,
लिविंगस्टन को डालो, सही
वो
बात।
वाला गैप फिल कर दिया उन्होंने कि जी बेस तो की अटैकिंग गेम लिविंगस्टन से पूरी करेंगे, बाकी आप उनका स्क्वाड उठा के देखो ऊपर से लेके नीचे तक सारे अटैकिंग बैटर्स ही लग रहे हैं, सिर्फ वो बेन फोक्स एक अच्छी
बिल्कुल
इंक्लूजन है। मैं सोच रहा था
नहीं,
कि
वो भी बोले
मैं सोच रहा
बोले
था कि हसीब हमीद की इंक्लूजन शायद होगी, वो नहीं है ना आई थिंक स्क्वाड में,
कौन आपने क्या नाम लिया?
हसीब हमीद जो है, जो उनके ओपनिंग
नहीं
बैट्स
नहीं
हैं।
नहीं 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 वो नहीं, वो नहीं है। इनका एक और मुझे जो सरप्राइजिंग लगा वो था, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला है, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता था, बैक डकेट,
हाँ
उसकी भी इंक्लूजन हुई है, तो वो एक बड़ा एक अच्छा, उसको कह रहे हैं ये एज अ फेसर खिलाएंगे टेस्ट मैच में, तो देखते हैं ये वाला कैसा इनका निकलती है चीज।
इंटरेस्टिंग चॉइस होगी, हालांकि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, अगर वो मिडल ऑर्डर में खेले तो आई
हाँ
थिंक सही हो
बिल्कुल,
जाएगा। अच्छा
मैं भी यही सोच रहा था जब बन
विल जैक्स
रही
भी आ गया है
थी।
भाई, वो भी एक अच्छी इंक्लूजन है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है लेकिन आ गई है वो भी स्क्वाड में, बंदा
हाँ
स्क्वाड का
एंडरसन भी है आपके
स्क्वाड
फेवरेट,
स्क्वाड का एक दफा कर ही देते हैं फिर, अगर बात छेड़ी दी है तो।
हाँ चले बता दें।
बेन स्टोक्स जी कप्तान है, ये इंग्लैंड का टेस्ट मैच का स्क्वाड है जो पाकिस्तान आ रहा है। जेम्स एंडरसन है, हैरी ब्रूक भी टेस्ट टीम में आ गए हैं, ठीक है। जैक क्रॉली की फेवरेट टीम ही पाकिस्तान है, वो किसी और को नहीं मारते, सिर्फ पाकिस्तान को मारते। डबल सेंचुरी भी कर रखी है उन्होंने हमारे अगेंस्ट। बेन डकेट आ गए, बेन फोक्स आ गए, विल जैक्स आ गए, कीटन जेनिंग्स हैं ये ओपनिंग बैट्समैन आई थिंक, जैक लीच इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, लियाम लिविंगस्टन, जेमी ओवर्टन, ओली पोप इनके मतलब ज़बरदस्त क्लासिकल बैट्समैन है। अच्छा, ओली रॉबिन्सन, जो रूट और मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड मिसिंग है उनके, मेरे
मार्क
ख्याल
वुड,
कोई बच्चा शच्चा पैदा होना है उनका।
पेटर्नल लीव्स है उनकी, पेटर्नल लीव्स
हाँ
चल रही है उनको। यार ये मार्क वुड वाली इंक्लूजन जो है ना, ये थोड़ी अलार्मिंग है। मतलब
अच्छा, फुल स्ट्रेंथ
ये
आ रहे
ना,
हैं भाई, कोई ये वो वाला चक्कर नहीं है कि हैवी किस्म की बॉलिंग है और हैवी किस्म की बैटिंग है इनकी, विद अ वेरी गुड कीपर।
बिल्कुल
मतलब बेन फोक्स इज एन एक्सीलेंट विकेट कीपर।
बिल्कुल, देखते हैं क्या बनता है।
वाइब्स आ रही है मुझे तो,
तो
कि इधर भी
चले
घंटा लगा देंगे हमारी।
बस आप दुआ करें पिचेस अच्छी हो, एटलीस्ट बॉल स्विंग हो रही हो। जैसा रावलपिंडी वाली पिच का इशू हुआ था, जिसपे वार्नर ने कहा था यार पिच तो ऐसी बना जिसमें बॉल थोड़ी सी घूमे, तो उस तरह का कुछ इशू ना हो पिचेस में।
बिल्कुल जी, आखिरी दो कमेंट्स लेते हैं फिर इजाजत लेते हैं। वुडू पाक कहते हैं, हसन अली से जान छुड़ाया। अच्छा, इस छुड़ाया को मैं कुछ और पढ़ रहा था पहले, मैं जरा मुझे डर लग गया,
नहीं 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 छोड़ाया छोड़ाया
मैंने
छोड़ाया
कमेंट हाइड कर दिया।
हसन।
मैंने कहा यार ये जरा हैवी हो गया।
अच्छा
अच्छा, खुशदिल शाह आ गया, वो कैच छोड़ता है और ये फील्डर को कैच दे देता है। यार बस कर दो,
अच्छा
बेचारे पे बहुत होगी भाई, बहुत होगी। अच्छा जी, कमलेश नागरकोटी, ही इज इंजर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ही वॉज कैरेड बाय टीम इंडिया एज अ नेट बॉलर इन द लास्ट इंग्लैंड टूर, बट वॉज इंजर्ड अगेन, यूज टू बॉल 140+ एंड लुक वेरी प्रॉमिसिंग। बिल्कुल
बिल्कुल
सर, मुझे इनका एक्शन भी बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन ऑब्वियसली एक्शन में ही कोई मसला होगा इनके, जो इंजर्ड हो जाते हैं ये बार बार। ये तो बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा था, कि मुझे तो लग रहा था ये बड़ा फास्ट ट्रैक इंडिया टीम में आ जाएगा लड़का, लेकिन नहीं यार। सो उमेर साहब, शाउट आउट ये कर दें, शाउट आउट कहना चाहिए, क्या
हाँ
कहना
बिल्कुल
चाहिए?
यार, शाउट आउट तो बल्कि हमने किया ही नहीं, ये तो हम अक्सर वीडियो के बीच में कर रहे होते हैं। अभी जो जो हमारा चैनल देख रहे हैं हमें सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको लाजमी एनेबल करें, और साथ साथ सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर, और उसके साथ साथ हमारी जो पॉडकास्ट है जलाल, उसके बारे में आप बता दें, पॉडकास्ट वगैरह जो है स्पॉटिफाई है
बिल्कुल
ऐसे।
सर, हमारी तो वेबसाइट पे हमारे सारे पॉडकास्ट पड़े होंगे, ये वाला भी हम अपलोड कर देंगे एज सुन एज वी आर डन विद दिस। www.talkbeforewicket.com हमारी वेबसाइट है, जितने भी हमारे पॉडकास्ट हुए हैं वह सारे ऑडियो फॉर्मेट में उधर वेबसाइट पे मौजूद हैं। यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लोर करें, यहाँ पे पॉडकास्ट के अलावा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट और भी ज़्यादा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। फिर ये वाली स्ट्रीम इस टाइम के ऊपर ट्विटर, फेसबुक, ट्विच, यूट्यूब के ऊपर लाइव हो रही है, तो आप जहां भी बैठे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं, उसको फॉलो, सब्सक्राइब, जो भी बनता है वो आप करें। और सबसे बढ़कर जो चीज़ अच्छी लगी है उसका भी बताएं, जो चीज़ बुरी लगी है उसका भी बताएं, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। क्या ख्याल है मेहर साहब, इजाज़त
बिल्कुल
लेनी चाहिए?
बिल्कुल यार, इजाजत लेनी चाहिए, रात के 12:50 हो गए इधर, आपकी तो सुबह होगी उधर। क्या
क्या बात है, ये तो फायदा है ना फिर।
बात, फायदे फायदे, सही। चले फिर जलाल साहब, फिर बात होती है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सही,
आज भी एक अनहोनी हुई है अमेर साहब, ये 2 दिन लगातार हो
मैं
गए
समझ
हैं,
गया हूँ, मैं समझ गया हूँ,
आपका
आपसे
इंटरनेट
होने
कनेक्शन साथ
का
दे रहा
बस
है।
आप दुआ करें रोज देता रहे और आगे
आज
वर्ल्ड कप
आज
में
बीच
साथ
में मुझे
दे।
एक जगह लगा था कि आप निकल लिए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बीच में,
अच्छा
वो सिर्फ
नहीं नहीं यार, बस आप दुआ करें ऐसे ही रहे इंटरनेट, और नहीं तो बड़े मसले हो जाते हमारे बस चलता रहे। अच्छा
नहीं, सर जी माजरत की कोई ज़रूरत नहीं है। इशफाक अली साहब, आपका कमेंट कोई नेगेटिव नहीं था, आप जो भी शेयर करें
हाँ नहीं
वो
नहीं बिल्कुल बिल्कुल
आपकी अपनी राय है, हमारा काम है कि हम आपकी राय को शामिल करें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो दिल में आता है बोलें, बस गालियां
ऐसे
शालियां या किसी का किसी प्लेयर का उस तरह
पर्सनल
पर्सनल होके मजाक ना
अटैक
उड़ाएं।
ना करें, पर्सनल
हाँ
ना करें
बाकी
आप।
सही है, बाकी सब जायज़ है।
और हमारा जो गोल है इस चैनल का वो है भी यही कि हम लोग जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें और जो पॉजिटिव इमेज है उसी को आगे उसी को आगे लेके चलो।
हाँ बिल्कुल, ओके जी सर, अपना ख्याल रखें सारे, और
ओके जी,
खुदा हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।